نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دار قرآن 2020 آج اس میں ہم پارا نمبر 29 کریں گے بہت ہی خوبصورت پارے اور ان کا پیغام بھی بہت ہی پیارا پیچھے ہم نے 28 پارا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے گھر اور گھر والوں کی طرف ایک بہت ہی خیر کا ذریعہ بننے کا موقع دیا اور ہم سب کے لیے اس چیز کو آسان کیا کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں بہترین طریقے سے رہ سکیں۔ مجھے کل سے لے کے آج تک بس ایک لفظ پریشان کر رہا ہے اور وہ ہے یوم التغابن، غبن کا دن۔ شاید جلدی میں آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم التغابن ہے، اور اگر اس کو میں نے آپ نے آج اگر سمجھ لیا تو میری آج کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل آنے والے دن جو میری آپ کی زندگی پہ بہت اثر انداز ہونے والے ہیں اس میں بہتری آئے گی۔ یعنی غبن کا دن، ہار جیت کا دن، سوچئے آپ یا میں ہاریں گے یا جیتیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ایک کی نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوں گی اور وہ کچھ کر نہیں سکے گا کیونکہ وہ مفلس ہوگا۔ جس نے اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ دیے، جس نے اپنی زبان سے تکلیفیں دیں، ہاتھ سے تکلیفیں دیں، شروع میں تو اس کی نیکیاں لوگوں کے نام چلی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس محاسبے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ اس محاسبے کے بغیر ہی اس کو آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہے کہ کچھ اور انفارمیشنز ہمارے ساتھ ہو گئیں، ہم نے کچھ اور چیزیں جان لی، لیکن بہت سوچ کے اس زندگی کو گزاریے۔ یہ پرچہ بہت مشکل ہے امتحان کا۔ آج دنیا میں جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سانس کی آواز، سنیزنگ، وسپر بھی ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ تو میرے آپ کے اوپر تو وہ سینسرز اور وہ ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں کہ جو دلوں کی باتوں کو بھی لکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بہت ہی سوچ اور شعور کے ساتھ چلنا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگ اپنی اصل پہ ہوں گے، حقیقت کھلے گی۔ آج بہت سارے لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ لوگوں کو بہت ہی اچھی شہرت دے دیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس لفظ میں گھبراہٹ ہے کہ نہ جانے اس دن ہماری کیا حقیقت کھلے۔ شاید 50 نیکیوں کے بدلے میں کوئی ایک ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اس طرح سے لوگ اس دن کھل کھل کر سامنے آئیں گے، ایکسپوز ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے افراتفری کا دن آنے والا ہے، اور جو یہ سمجھے گا کہ وہ بہت نیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مفلس ہو، اور جس کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ فرسٹ آئے گا، ہو سکتا ہے صرف پاسنگ مارکس ہو۔ اور ہر جنتی اور ہر جہنمی کو سوچنا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب جملے ذہن میں رکھتے ہوئے پارا نمبر 29 کے تھیم کو لیجئے گا، وہ ہے دنیا کو دار العمل نہ سمجھنے کا فتنہ۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتا ہے کہ حقیقت دنیا کو نہ سمجھنے کا فتنہ۔ اور بھی بات سمجھنا ہو تو پھر سمجھیے کہ کمرہ امتحان کو پارٹی ہال سمجھنے کا فتنہ۔ شروع ہی کی آیات میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں۔ آج کی جو مرکزی آیت ہے، تھیم آیت، وہ سورت ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ بات پیچھے سے چلتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ آیت آپ کو مجھے ایک سوچ دیتی ہے کہ ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، دار العمل ہے۔ امتحان لینے والی ایک ہستی ہوتی ہے جس کو آپ ایگزامینر یا ممتحن کہہ لیجئے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کچھ گواہ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں کوئی نقل تو نہیں مار رہا، سب ٹھیک تو چل رہا ہے۔ تو ہمارے گواہ خود اللہ تعالیٰ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہمارے اعضا بھی ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں۔ ہر کمرہ امتحان میں مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، کتنی دیر میں پیپر سالو کرنا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے تو ہماری مہلت امتحان ہماری زندگی ہے۔ عام طور پہ تو ایک کلاس میں رہنے والوں کو ایک ہی جتنا وقت دیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ دنیا مختلف ہے۔ آپ کو مجھے مختلف طرح کے وقت دیے جاتے ہیں، اور وقت پہلے تو بتا دیا جاتا ہے، مجھے آپ کو نہیں بتایا گیا، بس ایک تلوار لٹک گئی ہمارے سروں پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है, और एक खबर दे दी कि जब किसी की मौत का वक्त आता है तो ला यस्तकदीमून वला यस्ताखिरून, एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं। दुनिया में तो कुछ एग्जामिनर थोड़ी सी ढील देने के बाद नरमी का मामला करते हुए चंद मिनट ऊपर दे ही देते हैं। ये अलग बात है कि बाद में जब पर्चा छिनता है तो अमूमन नीचे लाइन लगी होती है। इसी तरह आपका मेरा एक दिन ये पर्चा छीन लिया जाएगा। सुबह का वक्त है कि शाम का है, हम सफ़र में हैं कि हज़र में हैं, अभी हमारे बच्चों को और हमारे घर वालों को हमारी कितनी ज़रूरत है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा। आमतौर पे आप देखिए कि लिखने की कोशिशें की जाती है ना इम्तिहान के दौरान, तो वहाँ हम लिख चुके कि नहीं लिख चुके, हमने पीछे क्या किया नहीं किया, बस मोहलत उम्र आएगी और हमसे पर्चा छिन जाएगा। पीछे पढ़ चुके सूरत बनी इसराइल में, वकुल्ल इंसान इन अल्जम ना हुतरा खूफी नक़ी। तो आपका मेरा पर्चा हमारे गले में है। फिर आप देखिए कि जब इम्तिहान देने जाता है इंसान, तो उसके सामने जो पर्चा आता है उस पे कुछ सवालात होते हैं, लेकिन उससे पहले इंसान को कुछ सिलेबस दिया जाता है। इस दुनिया के इम्तिहान गाह में बैठे हुए लोगों का सिलेबस कुरान और सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान पाक में और अल्लाह के नबी ने हदीस में उसी को वाज़ेह करके बता दिया कि तुम्हें यहाँ से जाने के बाद करना क्या है। और आप और मैं अगर सिलेबस खोले ही ना, पढ़े ही ना, उसके ऊपर हमारी नज़रें ही ना जाएं तो क्या होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ मददगार होते हैं, हेल्पर्स होते हैं जिससे इंसान फ़ायदा लेता है, मतलब उस्ताद होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं जिनसे ट्यूशन पढ़ी जाती है, माँ बाप मदद करते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं बच्चों को इम्तिहान गाह में छोड़ने के लिए, कोई कुछ कोई कुछ। इस रास्ते में हमारे मददगार अम्बिया कराम और रसूल थे जो जा चुके हैं। आज के दौर में इस इम्तिहान की तैयारी करवाने वाले ट्यूशन सेंटर्स वो जगह हैं जहाँ पे कुरान और सुन्नत पढ़ाया जाता है, और वहाँ के उस्ताद और दाईये दीन जो आज के दौर में दुनिया में अल्लाह का सच्चा दीन फैला रहे हैं, ये सब हमारे मददगार हैं, सालेहीन हैं, जो अपने तरीकों पे चलकर अच्छे रास्तों में जाकर हमारे लिए एक रोशनी के मीनारे हैं और सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम की एक मिसाल बन के हमारे सामने हर दौर में ही कुछ अच्छे लोग ज़रूर होते हैं कि जिसके बाद आप कह सकते हैं कि आज के दौर में भी दीन पे अमल हो सकता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इंसान जब इम्तिहान देता है, अब जब एक कमरा इम्तिहान में आप चले गए तो वहाँ चंद चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, मसलन वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। अगर शुरू के 2 घंटे को बैठा ही रहे और इधर उधर ताका झांकी में रहे तो आखिरी 1 घंटे में वो कैसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि कमरे में आने से पहले सिलेबस को फॉलो किया जाए, अगर कोई बुक्स ही ना खरीदे, सिलेबस ही फॉलो ना करे तो क्या पढ़ेगा। तो क्या पता चला कि इस कमरे इम्तिहान में इस कुरान को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तकीन, इस किताब को अल्लाह ने हमारे लिए एक सिलेबस बना दिया। फिर आप देखिए कि डेट शीट देखनी पड़ती है, पता चले कि आप फिजिक्स की तैयारी करके चले गए और इम्तिहान केमिस्ट्री का था तो भी क्या लिखेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एग्जामिनर की इताअत करनी पड़ती है, और इसी तरह से आप देखिए कि पर्चा अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके एग्जामिनर के हाथ में देना पड़ता है। आप कहें कि मैंने इतनी मेहनत से लिखा, मैं क्यों दूं, घर ले आए, आप पास नहीं होंगे। और इसी तरह से अगर आप उसको कहीं और छोड़ दें और सफाई करने को दे दें कि लो इसके साथ टेबल साफ कर लो, तो भी आप पास नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको मुझे अल्लाह की हर बात में बात माननी पड़ेगी, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल यही है। पर्चा हैंडओवर तो हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, वो तो जब मौत का फरिश्ता आएगा तो छीन के ले जाएगा। और फिर याद रखिए कि अगर कोई पर्चा घर ले आए और उसको और बड़े खूबसूरत तरीके में फ्रेम करके घर की दीवार पे लगा दे कि देखो मैंने कितना अच्छा पेपर दिया था, तो क्या मकसद हासिल होगा। बिल्कुल इसी तरह आज हम इस कुरान के खूबसूरत क़िते, खूबसूरत कैलीग्राफिक्स हज़ारों डॉलर्स की लेकर लगा लें तो क्या हम पास हो जाएंगे क़यामत के दिन। फिर आप देखिए कि एक बच्चा जो गया और माँ घर आने पे पूछती है, बेटा पेपर कैसा हुआ, कहता है बहुत अच्छा हुआ, एक्सीलेंट। माँ कहती है वो फुलां फुलां सवाल आ गए जो कल सोच रहे थे, क्योंकि माओं का भी आज बड़ा इम्तिहान होता है, बाल सफ़ेद कर लेती हैं बच्चों के इम्तिहानों में, 4 साल का बच्चा और ऐसे लगता है कि PhD का उसका इम्तिहान है, और माँ गमजदा आज शायद ही जायनमाज पर कभी इस तरह बैठी हों जब बच्चों के इम्तिहान के वक्त पर बैठी हों, और शायद ही कभी किसी ने दर्द के साथ आपको दुआ के लिए कहा हो, जैसी दर्दमंदी से बच्चे कह के जाते मामा बस आओ आप जायनमाज पे बैठ जाएं, और उस दिन फजर भी पढ़ ली जाती है। अब माँ कहती है बेटा कैसा, वो कहता है मामा वो सवाल तो आए कोई नहीं, एक भी नहीं आया, या एक आया बाकी 4-5 नहीं थे। अब माँ का दिल थकता, फिर तुमने क्या किया, कहता मैंने क्या करना था, उस पर्चे को मैंने फाड़ दिया, फिर मैंने पहले खुद पर्चा बनाया। बड़ी पसंदीदा, जो जो सवाल मुझे आते थे मैंने सारे पेपर में लिखे, बस फिर तो होना तो 100% अच्छा है। मेरा ले अगर उसने कोई 10-20 हज़ार रुपये की ट्यूशंस दी होगी तो बेहोश हो जाएगी। किस अंदर एक और साल तेरा लगेगा इसमें। आज हम दीन के नाम पे क्या करते हैं, लिखेगा एग्जाम। अपनी मर्जी के पेपर बनाकर उसको अटेम्प्ट करने को आज बिदत कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए दीन पे जो लोग राज़ी नहीं होते और अपनी मर्जियाँ करते हैं, उनका हाल कुछ ऐसा ही है। तो ये दुनिया कमरा इम्तिहान है, और याद रखिए कि तबारक अल्लज़ी कहकर एग्जामिनर की शान बताई जा रही है कि तुम्हें उसको देखना है। उसको कायनात में देखोगे, तुम्हें वो याद आएगा, खुशियों में याद आएगा, गमों में याद आएगा, और इंस्ट्रक्शंस को तुमने फॉलो करना है। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कुछ मतलूबा नसीहतें होती हैं, उसको पढ़े बगैर दुनिया से ज़िंदगी गुजर गई, बाद में लोग आपके ऊपर बैठकर वो इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहें। आज हम कुरान के साथ ये करते हैं, इसी को कुरान खानी और इसी को ही साले सवाब कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब हम इम्तिहान देकर बाहर आ जाते हैं तो अमूमन कुछ वक्त होता है, मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं या FA है, FSC है, BA, BSc या A-लेवल, O-लेवल, तो वो वेटिंग टाइम जो है ना वो हमारा कब्र में होगा, और उसके बाद फिर रिजल्ट डे आता है, वो मैदाने मक्शर होगा। हम सब मैदाने मक्शर में खड़े होंगे और वहाँ रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं, वो हमारे नामे अमाल होंगे। ये है हमारे बोर्डिंग पास टू जन्ना और बोर्डिंग पास टू जहन्नम, हेल और हेवन, नथिंग एल्स, कोई इसके अलावा चीज़ नहीं है। और कमरा इम्तिहान के बाद ये सारे मराहिल से गुजर कर या तो आप अगली क्लास में चले जाते हैं या उससे पीछे हैं। तो ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यही ये पारा आपको मुझे सिखा रहा है। लेकिन फितना क्या बना कि हमने सोच लिया कि हम कमरे इम्तिहान में नहीं, हम तो फन के मूड में हैं। कैसे, एक मिसाल से समझिए। जो सुबह इम्तिहान के लिए जा रहा है, क्या उससे लोग पूछते हैं क्या पहन के आ रही हो, कल मेकअप कहाँ से कराना है, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, फिजिक्स के पेपर में क्या पहनोगी, केमिस्ट्री में क्या पहनोगी, बायोलॉजी में क्या पहनोगी, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। ओके का नहीं, नाश्ता तक नहीं करते बच्चे। माएँ बेचारी सलामत रखे अल्लाह माओं को, ट्रे लगा लगा कर किचन में नहीं बुलाती, कहती है मैं तुम्हारे कमरे में देती हूँ, तुम पढ़ो। बिल्कुल यही काम अल्लाह ने किया, तुम पढ़ो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। वमा बिंदा बतनी, पढ़ कर आए हैं 12वें पारे में कि अल्लाह कहता है कि तुम इस दुनिया में चूके एक इम्तिहान के लिए आए हो, तो तुम्हारा खाना पानी मेरे जिम्मे है। क्या कहा जाए उस इंसान को कि जिसकी ज़िंदगी इस तरह की गुजर रही है, वो खाने पानी में इतना उलझ गया कि उसे इम्तिहान के लिए तैयार नहीं। तभी तो फिर हम अल्लाह के काम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अपने बड़े काम हैं। फिर आप देखिए कि जब आप ये सारे काम कर करा के अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक इस दुनिया से जाते हैं, तो आपको उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मामला होगा, ख़राब मामला नहीं होगा। लेकिन अगर इस वक्त ये जो इम्तिहान के लिए जाने वाले के लिए सवाल ऑकवर्ड थे, इसके बरक्स शाम को किसी पार्टी में जाना है वीकेंड पे, और बहुत बड़ी गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, शादी है, और कह लीजिए कि वलीमे का फंक्शन है, चलिए कुछ और नहीं, बातें क्या होती हैं, क्या पहनोगी, ज्वेलरी कौन सी, आज मेकअप कहाँ से होगा, सजता। पार्टी के साथ ही फन, फ्रॉलिक, रिलैक्सेशन, पहनना ओढ़ना, आज खाना क्या, मेन्यू क्या है वलीमे का, तो बस यहाँ जुमला लिख लीजिए, आप समझ गए हैं। जो बंदा इस दुनिया को दारुल इम्तिहान समझेगा, क्लासरूम समझेगा, उसकी सोच बदल जाएगी, उसका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करने के लिए आया हूँ। और जिसने मकसद हयात को ना समझा, तो उसका मामला क्या होगा, वही होगा जो आज दिख रहा है। गैर तो ऐसे ही है, पीछे पढ़ चुके हैं, सूरह स्वात में आयत आई थी के वमा खलकना समावाती वल अर्दी लाइबीन, हमने इस दुनिया को कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। और एक जगह आता है वजाली का जन्नुल्लज़ीन कफरू, ये तो काफिरों का जन्न है, ये भी सूरह स्वात में हजरत दाऊद के किस्से से बिल्कुल ऊपर आया था। तो क्या पता चला, मुसलमान का तो ये जन्न नहीं होता, हमारे अल्लाह के नबी सारे देख लीजिए, अम्बिया कराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबा कराम की ज़िंदगी पे थोड़ा सा गौर करें, क्या वो इस दुनिया को कमरा इम्तिहान समझे हुए थे या पार्टी रूम समझे हुए थे। यहाँ से सोच बदलती है, ये जो हर चीज़ में फ़न फ़न फ़न, खुशी, बोर हो रहे, ये नहीं चाहिए, हत्ता के दीन के नाम पर भी उछला कूदी ना करें तो लोगों का उसमें भी दिल नहीं बनता। संजीदा बातें कौन करे जो इस वक्त हम कर रहे हैं, और वो भी हम कर रहे हैं दौरे कुरान में, जिसको आप कह सकते हैं इट्स नॉट जस्ट अ दौरे कुरान, ये आपकी मेरी ज़िंदगी के अगले नतायज और रिजल्ट्स पे बहुत अहम होगा। तो जब सोच बदल जाती है तो फिर हमारे काम करने के तरीके बदल जाते हैं, यही है फितने हयात व ममात। चार नाम रख लीजिए आप इस पारे के, जिंदगी और मौत के फितने यही हैं कि ना हमें आने का मतलब पता, ना मकसद पता, ना जाने का पता। फिर एक और थोड़ा सा एंगल से समझ लेते हैं, और वो क्या है कि इम्तिहान का, यानी जिसको भी आप दारुल अमल कहते हैं, उसमें कुछ सवालात होते हैं, और अमूमन पर्चा जब रिटर्न फॉर्म में थियोरेटिकल जाता था तो हमारे वक्त में 5-6 सवाल होते थे, टोटल 8 होते थे, उसमें से एक मस्त था, बाकी में से कोई भी 4 कर ले, यानी 8 में से 5 करने होते थे। आज वाइवा सिस्टम है या जब ऑनलाइन पेपर्स हैं, इसको जो भी है समझ लीजिए बस, ताकि आपको आज पूरे दिन का खुलासा समझ आ जाए। और वो क्या है कि कुछ कंपलसरी सवाल होते हैं और कुछ ऑप्शनल, ऑप्शनल में चॉइस भी होती है। अब आप पहला सवाल छोड़ दें जो कंपलसरी था और बाकी में से 4 की बजाय 5 ही कर लें, पास नहीं करते, वो कहते हैं आपने कंपलसरी छोड़ा, ऑप्शनल दिया, हमें नहीं चाहिए। पहला गलत कर दें, नंबर कट जाए और आखिरी में पूरे नंबर दें, नहीं होगा। कोई एक कहता है कि मैं 5 नहीं करता, 8 में से मैं 8 ही करता हूँ, नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा 3 करने के, बस समझ गए आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मेरे लिए अल्लाह ने कुछ चीज़ें कंपलसरी रखी हैं, फ़राइज़। फ़राइज़ छोड़कर सिर्फ ऑप्शनल नेकियां करते जाने वालों को भी वहां जाकर रिजल्ट गलत मिलेगा। और इसी तरह से कुछ अपनी तरफ से कर लो, क्या हर्ज है, क्या फ़र्क पड़ता है, नेकी तो है, किसी का दिल तो नहीं टूटा, चलो इसी बहाने लोग कुछ काम तो करते हैं, कोई नेकी तो होती, कुछ कुरान पढ़ता, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाली कैफियत है। फिर आप देखिए कि दारुल अमल के जो सवाल आते हैं आपके सामने, क्या सवाल आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मेरे लिए जो इस दुनिया में आने के बाद है, वो क्या है कि आप एक इंसान होने के नाते अपना मकसद हयात समझिए, व्हाट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ। 1-2 दिन पहले ही आप पढ़ कर आए हैं सूरत जारियात में, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ये है बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते पहला सवाल जो आपने मैंने हल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आजकल सीरीज देख रहे हैं अपने साथ, उसमें पहला पॉइंट यही था कि बंदगी रब। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है, बींग अ मुस्लिम हमारा मकसद हयात क्या है, तो वो है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, मिशने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें तीसरा सवाल आएगा, क़यामत के दिन जो पूछा जाएगा वो इबादत का होगा, फ़राइज़, फिर नवाफिल, फिर सुन्नतें, फिर उसकी बहुत प्यारी कैफियत जो बाद में फिर इताअत और सबमिशन और स्लेवरी में ढलती हैं। चौथा सवाल होगा हकूक़ अल इबाद का, मामलात, लोगों से मामले कैसे थे, बेटी होने के नाते कैसी थी, बहन होने के नाते आप कैसी थी, आप बीवी होने के नाते, शौहर होने के नाते, ये बड़ी सख्त तराजू है जिसमें अक्सर लोग फेल होते हैं, लिख लें। आज भी बहुत सारे लोग इबादात में तो पास हो जाते हैं, मामलात में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल खट्टे हैं एक दूसरे से, और कितनों के हक मार के हम एक अल्लाह को हक देने लगे तो भी वो दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक सवाल इस इम्तिहान गाह में है, इकामते दीन और तबलीग का, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से शुरू होता है और अकीमुद्दीन पे ख़त्म होता है। फिर इसी तरह अखलाकियात का एक पर्चा, अच्छे अखलाक के बुरे, सूरत हुजरात पे अमल किया कि ना किया, गीबत छोड़ी कि ना छोड़ी। फिर इसी तरह आप देखिए आयली और माली मामलात, मनी मैटर्स, ख़ानदानी मामलात, ससुराल में कैसी थी, यानी आपकी मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी कैसी है, इसी में बच्चों की तालीम व तरबियत है, कस्बे हलाल है, और फिर फितनों से बचाओ। इस पूरी दुनिया में रहते हुए एक ये भी सख्त इम्तिहान होता है कि इर्द गिर्द फितने हैं, परेशानियां हैं, कहीं हुब्बे माल है, कहीं नफ्स है, कहीं शैतान है, कहीं कुछ, तुमने बस फोकस होकर अपना काम करते रहना है। वो स्टूडेंट क्या करेगा जो कमरे इम्तिहान में गया, इधर देख उधर देख, इधर देख उधर देख, भाई क्या बात है, एग्जामिनर पूछे मसला क्या है, कहते मेरा दोस्त नहीं आया अभी, तो उसके गम में मैं तो बैठा हूँ, वो कहता है सुनो वो तो नहीं आया ना, तुम आए हुए हो, करो पेपर हल, पता चले वो ना आके महरूम हुआ तुम आके महरूम हो गए। आज से हम में से उन लोगों की मिसाल है जो दूसरों पे तनकीद करते रहते हैं, फलानी काम कर रहा, फलां अच्छा नहीं, फलां बुरा है, फलां ये कर गया और मैं भी नहीं करती, आज हमारा ये हाल है। अपने से का काम कीजिए, अपना पेपर हल करके जाइए, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो फिर कैसे कामयाब होते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्तिहान गाह में जाने के बाद दिल चाहता है कामयाब हो, तो कुछ रूल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पहली बात है तंजीम औकात, टाइम को मैनेज कीजिए, आप देखिए कि आपने पूरी ज़िंदगी में करना क्या है, 3 घंटे को ऐसे डिवाइड कीजिए, 45-45 मिनट के 2 सवाल और आगे आगे जाकर फिर 40 और 35 मिनट में करें तो 5 सवाल हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुझे भी अपने टाइम को मैनेज करना होगा। फिर दूसरी बात है लघवियात और लहव लायब से परहेज़ करना, आप उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो कमरा इम्तिहान में बैठा फेसबुक के मैसेज चेक कर रहा हो, व्हाट्सएप की फाइल्स को आगे से आगे कर रहा हो, और वो कहता है ज़रा एक फिल्म रिलीज़ हुई है मैं थोड़ा उसका ट्रेलर ही देख लूँ, तो उसकी नासमझी में किसी को भी शक नहीं होगा। आज वो लोग जो घंटों के एतबार से सोशल मीडिया का रॉन्ग यूज़ करते हैं, फिल्में ड्रामे और ख़बरों के नाम पर और न जाने क्या कुछ के नाम पर ज़िंदगी की कीमती घड़ियां ज़ाया करते हैं। मोमिन के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो स्पिल नहीं खेलते और वो इस तरह के ताश और इस तरह के पत्ते नहीं खेलते कि ज़िंदगी सिर्फ गुजर जाए, जान छूट जाए। फिर इसी तरह आप देखिए, खाने, रहन सहन, लिबास और ख़र्च के मामले में तंजीम होती है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और अगर आप भूखे पेट चले जाएं पेपर देने तो वहाँ जाकर आपकी शुगर लो होगी, आपका दिमाग नहीं चलेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हुसन से अहसन, यानी आप अच्छे थे, हसना कर रहे थे, उससे अहसन आमाल का सफ़र करना है, किताबे हिदायत का मुताला करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हुआ वो तबाह हो गया। तो आप मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से आज की ज़िंदगी अच्छी रखें, आज से फिर कल अगली अच्छी होगी। अगर इसके लिए आपको मुझे एक बुक की ज़रूरत है, जो कि कोचिंग बुक होगी, जो आपके लिए मेरे लिए ट्रेनिंग का काम करेगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हमेशा लोग इम्तिहान से पहले पुराने पेपर्स चेक करते हैं, पहले साल क्या आया था, फलां क्या हुआ, फिर पिछले साल कौन फर्स्ट आया था, अच्छा उसकी क्या रूटीन थी। तो आपके मेरे पास इस दुनिया में रोल मॉडल्स अम्बिया कराम और सहाबा कराम है। फ़ैना मिनु बि मिसलिमा मन तुम बिही फ़क़द इहतदो, पहले पारे की बिल्कुल आखिरी आयतों में से एक आयत है कि अगर तुम वैसा ही मान ले आओ जैसे ये लेकर आए तो तुम हिदायत पे आ जाओगे। इसीलिए बार बार सहाबा के किस्से सुनकर हम अपना ईमान ताज़ा करते हैं। फिर आप देखिए कि गलती की गुंजाइश नहीं, हर सवाल का जवाब देना लाजमी है। यह अलग बात है कि अल्लाह ने सवालों की मुख्तलिफ कैफियत रखी। फिर इसी तरह मुमतहिन, अल्लाह ताला को खुश करना, राज़ी करना, एग्जामिनर को खुश रखेंगे ना तो आपका हर मामला दुरुस्त होगा। और अगर जिस स्टूडेंट ने अपने उस्ताद को या एग्जामिनर को या अपने जिम्मेदार को परेशान कर दिया तो खामखा में वो एक चिड़ वाली बात होती है, और जो वो कह दे उसको मानना पड़ता है। वो कहते हैं जी वक्त इतना इतना है, वो कहते हैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं ब्लू पेन यूज़ करना है, आप कहते हैं ठीक है। तो आपने मैंने अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी रहना है। और इसके बाद फिर दुआएं, अज़म, हिम्मत, बुलंद हौसले और इरादे, ये सब कामयाबियों के असूल है। जिसने ज़िंदगी के इस इम्तिहान गाह में ये सारे असूल फॉलो कर लिए, अल्लाह ताला उसके ऊपर बेहतरीन मामला करेगा। चूँकि आयत भी शुरू में, इसलिए सारा मसला भी समझ लें ताकि पूरे पारे को फिर हम आयतों के साथ लेकर चलें। अगला सवाल यह कि अगर आप दुनिया को दारुल अमल नहीं समझते और इस दुनिया को इम्तिहान का कमरा नहीं समझते तो नुकसान क्या होता है, फितने क्या उठते हैं? पहली बात है, पूरी बंदगी नहीं होगी, आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, आप आधी चार पाँच सवाल लेंगे और पिछले सालों के कुछ सवाल लेकर कहेंगे यही आएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों ने पूरा कुरान नहीं पढ़ा हुआ। और फिर आप अल्लाह के नबी के मिशन से रूगर्दानी करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें मुश्किलें आनी है, इसलिए इसको छोड़ दें। फिर इसी तरह आप देखिए, थकी मानदी बातें, कमज़ोरी बातें, लगे बंदे फ़राइज़ पढ़ के नफली इबादात से गुरेज करते हैं और कभी फ़र्ज़ छोड़ छोड़ के सारी रात नफिल पढ़ते हैं क्योंकि आज 15 शाबान है। फिर इसी तरह आप देखिए, हकूक़ुल इबाद और मामलात में ख़राबियाँ आने लगती हैं उन लोगों की जो इसको दारुल अमल नहीं समझते। वो कहते हैं जो कर लो, वो ये समझते नहीं कि आज यहाँ आपका जो इंसान से मामला है ना, ये असल में आपका अल्लाह ताला के साथ मामला होने वाला है वहाँ। फिर इसी तरह बतौर दाए ये दीन किरदार अदा नहीं करता इंसान, वो कहता है मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। देख ही रहे हैं कि सबसे पहले बंदगी रब होती है, फिर शहादत अलन्नास है, इसमें कमी आने लगती है, फिर इंसान के अखलाक बुरे होते हैं, और फिर याद रखिए तरबियत में कोताही होती है। हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, हम अपने बच्चों को सिर्फ खिलौने समझते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, उनकी पोनियाँ लेते हैं, उनके पिंक ब्लू कपड़े लेते हैं, उनके कलरफुल चमकने वाले लाइट वाले जॉगर्स लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये बच्चे खिलौने नहीं हैं। हालांकि हमें उनकी जिस्मानी तरबियत के साथ जज्बाती तरबियत, अखलाकी तरबियत करनी थी। याद रखिए कि अच्छे स्कूलों में पढ़ा देना, फिर उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाना, फिर उनकी अच्छी अच्छी जगहों पर शादियाँ कर देना, यही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को भी आग से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो जिस माँ बाप ने अपने औलाद की सही तरबियत ना की, समझ लीजिए कि उसने समझा ही नहीं कि ये मेरे बाद का मेरा करंट अकाउंट चल रहा है। जैसे औलादें हमारे लिए प्लेयर है ना, इसी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो फिर इंसान तरबियत अच्छी नहीं करता, और आखिरी जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आखिरत भूल जाती है। आज कितने लोग हैं जो आखिरत फरामोश जिंदगियां बसर कर रहे हैं और उनके करीब जाकर आपको महसूस ही नहीं होता। तो ये सारे काम करते हुए हमने अल्लाह से दुआएं मांगनी है। इस पारे की दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और आग के अजाब से बचा, यानी सिर्फ दुनिया दुनिया ना हो, हमारी आखिरत संवर जाए। कमरे इम्तिहान में बैठा हमेशा यही दुआएं करता है इंसान कि अल्लाह मुझे पास कर देना। और आज की हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है 7089, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी मोमिन पर एक नेकी के लिए भी जुल्म ना करेगा, इसका बदला दुनिया में देगा और आखिरत में भी देगा, और काफिर को इसकी नेकियों का बदला दुनिया में दिया जाता है, यहाँ तक कि जब आखिरत होगी तो इसके पास कोई नेकी न रहेगी जिसका वो बदला दिया जाए। आप और मैं अपने लिए क्या चाहते हैं? क्या हमारी नेकियाँ ख़राब हों, बदलें, बिगड़ें या सही हों? तो इसके लिए आपको मुझे एक संजीदा इंसान बन के जीना है। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि हम यहाँ से गुजर के निकल गए और सब ख़त्म हो गया। और याद रखिए कि आज ये सारी बातें जो मैं कह सुन रही हूँ, इसको सुनते वक्त हो सकता है किसी को अपनी पिछली ज़िंदगी पर शर्मसारी हो, क्योंकि बस स्टूडेंट्स जो है वो पेपर दे के आते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, हाई फेल हो जाएंगे, आज फिर नहीं सही हुआ पेपर तो आपने पीछे पढ़ी लिया तौबतन नसुहा, सच्ची पक्की तौबा, उधड़े को सी लो। नसखा कहते हैं पैचिंग को, पेमंदकारी को, जो आपकी रूह पे धब्बे पड़ चुके थे उसको अपनी तौबा के फाहे से सी लो। नदामत हो, इसलाह की नीयत हो, किसी का हक मारा है उसको दे दीजिए, इतात में इस जिस्म को खपाइए जैसे गुनाहों में खपाते थे, फ़राइज़ पूरे कीजिए, माफ़ियाँ मांग लीजिए लोगों के दिल तोड़े हैं, और आइंदा कामों को छोड़ दीजिए जो करते थे। ये सारी तौबा की शरायत है जो आपको मुझे पिछले पारे में मिल गई। इसके बरक्स आज हमारी तौबा का तरीका लोग कहते हैं कोई वजीफ़ा बता दें, कोई हज़ार दानों की तस्वीर, तौबा 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 करते हैं और बीच में टिक 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 काउंटर भी चल रहा होता है और हम साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ करके हम आगे चलते हैं कि अल्लाह हमने पिछले पारे में जो पुल सरात पे नूर के मुकम्मल होने की दुआ की थी, ए अल्लाह हमारा वो नूर इस दुनिया में इस कुरान के नूर के साथ पूरा कर दे। याद रखिए जैसे आज दुनिया में जीते हुए लोग मुख्तलिफ अंदाज से जी रहे हैं ना, कोई पूरा अमल कर रहा है, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई एग्जेजुरेशन ही कर रहा है, कोई खुश फहमियों में, कोई कहता है देखना अल्लाह ने मुझे माफ़ करना है, तो पुल सरात पे भी यही होगा, बिल्कुल फॉग में होंगे कुछ लोग, अगली गाड़ी का बम्पर ना दिखे, कुछ हेडलाइट जितनी रोशनियों में होंगे, कुछ टॉर्च लाइट में होंगे, किसी के पास फ्लड लाइट का नूर होगा, किसी के सिर्फ कैंडल की छोटी सी एक बत्ती होगी, कोई बल्ब और कोई ट्यूब की तरह होगा। तो मेरा आपका मामला सिर्फ इस दुनिया तक का होता ना तो गुजारा करते, हालांकि यकीन कीजिए जो दुनिया को दारुल अमल नहीं समझता ना उसकी दुनिया भी नहीं अच्छी होती, कोई उससे खुश नहीं होगा। तो यहाँ भी भटकते हैं, घर टूट रहे हैं, खराबियाँ हो रही हैं, वहाँ भी हो जाएंगी। अगर अंधेरों में फिसल कर जहन्नुम में गिर गए, उससे पहले बेहतर है कि अपने ऊपर उस चीज़ को रखें। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने जो तीन मुतालबे हमारे सामने रखे हैं इस कुरान को पूरा करते हुए, पहले दो तो हम समझ चुके कि अल्लाह के बंदे बनना, ये तो चलता ही रहेगा सफ़र, दिन ब दिन इसमें बेहतरी आएगी। दूसरा कल के पारे के साथ हमने देखा शहादत हक का फरीज़ा, किसी भी हद तक जिस जहाँ भी पहुँचे हैं वहाँ उसके हिसाब से आपने मैंने इस दीन को नाफिज करना है। आज आखिरी हिस्से पे चलते हैं जो असल में इस कमरा इम्तिहान में रहने के असल आखिरी सवाल का हमें जवाब देगा। तो अल्लाह ताला का हमसे तीसरा मुतालबा जो इस कुरान को पढ़ने के बाद तो और खुल के सामने आता है, वो क्या है कि दीन को नाफिज कीजिए, निफाज़े दीन कह लीजिए इसको। टर्म्स चूँकि मुश्किल होती हैं तो मेरा दिल होता है कि मैं आपको उसको हल्का फुल्का करके बताऊं, क्योंकि हम जब ये लफ्ज़ पढ़ते हैं हम कहते हैं अच्छा ये हुकूमत का काम है, अच्छा ये जमात इस्लामी का काम है, और ये कोई तंजीम होगी वो करेगी ये होगा। तो याद रखिए वो दीन का निफास हो, वो इकामत दीन का नाम हो, या वो शरीयत को नाफिज करने का मामला हो, जब तक ये नहीं होगा तो क्या होगा? एक रुक के मिसाल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज में 5-7 साल पढ़ने वाला, फिर 2-3 साल के हाउस जॉब करने वाला, एंड पे क्या करता है? मेडिकल प्रोफेशन को नाफिज करता है, क्लिनिक खोलेगा, किसी हॉस्पिटल में जॉब करेगा, बीमारों का इलाज करेगा। बस जहाँ समझ लीजिए आप और मैं इस वक्त इस मुतालबे पे खड़े कर दिए गए हैं, और वो क्या है कि जब हम दीन को नाफिज करते हैं इस्लाम की रोशनी में तो कैसे होता है? देखिए जैसे कुछ भी पढ़कर आप कुछ बनते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, आप लॉ कॉलेज में जाएंगे तो आप लॉयर बनेंगे, इसी तरह इस किताब को पढ़ने पढ़ाने वालों को भी बाद में कुछ बनना होता है। और ख़ास तौर पे सब स्टूडेंट्स को कहूँगी कि गौर से सुने, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले से गुजर चुके, सबीलुल जन्ना कर चुके, बंदगी आ गई, अल्लाह का खौफ आ गया, दूसरे दर्जे पे शहादत अल नास पे लगे हुए हैं, कल के पारे को जहन में ले आई ये सारी बातें, गोया के नूरुल्ला नूर में पहुँच गए हैं, और उसमें फिर आपको टिप्स दी जाती हैं। अब है आपका अगला काम, यानी आज का ये सारा फैसला जो भी देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी ज़िंदगी में कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं कुरान आए हुए, बाज़ाब्ता तौर पे स्टूडेंट बन चुके, अब उनसे क्या मतलूब है? इस दीन को सबसे पहले अपनी ज़ात पे नाफिज कीजिए, आपके इस जिस्म के बुत पर ये दीन नाफिज हो। और अपने ऊपर नाफिज कैसे करना है, कोई डंडा थोड़ी है जिसको ले जाना है। तो आप देखिए कि इसके अंदर फिर कितने मरहले हैं, सबसे पहले आपके अकीदे को ठीक होना, अकीदे पे मुकम्मल अबूर हासिल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे समझिए, इसकी नौ शरायत आती हैं आपको, हालांकि 11 भी है लेकिन नौ तो कम से कम है। आज लिखिए अपने लिए सवाल, क्या मुझे शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम है? मैंने तो जहाँ पूछा मेरा तो दिल बंद हो गया, अल्लाह जानता है। दो तीन दफ़ा भी इस पे दर्स और पूरे पूरे सेमिनार टाइप लॉन्ग सेशंस कर चुकी हूँ कि जिसको कलमा पढ़ते हुए इतने साल हो गए, 30, 35, 40 साल हो गए आपकी उम्रें, और अभी तक इसके तकाजे नहीं पता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है, और इसके बाद फिर ईमान बिल आखिरा की हकीकत समझे कि मरने के बाद मेरे साथ होना क्या है। ये है पहला निफास जो आपने अपने अकीदे पे लाना है। अकीदा गलत होगा तो बाकी सब खराब होगा। ये वही बात है कि जो जड़ें हैं आपके मेरे अमल की। उसके बाद दूसरी चीज़ जिस पे आपने दीन को नाफिज करना है, अब इस वक्त अपनी इबादत को चेक कीजिए। फ़राइज़ की भरपूर अदायगी आपसे मतलूब है, जो इतने मराहिल से गुजर चुके हैं, जिनको कुरान से जुड़े 4-5 साल हुए हैं, पैदा तो खैर शुरू से मुसलमान घर में ही हुए थे। तो इस वक्त आपकी मेरी नमाज़ों की क्या कैफियत है? अब भी छुटती हैं, अब भी लेट होती हैं, अब भी खुशू से खाली हैं, अभी भी सुन्नत के रंग में नहीं रंगी हुई, अभी भी नमाज में अल्लाह से ज़्यादा दूसरी चीज़ें याद आती हैं, अभी भी नमाज़ें पढ़कर भी हम अपने आप को दूसरी तरफ करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि फिर हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। फिर उसके बाद रोज़े पूरे, पिछले जो छूटते हैं वो रखती हूँ अगले साल से पहले, जो रोज़े छूटे थे पिछली ज़िंदगी में उसको पूरा किया। फिर इसके बाद हज के ऊपर आ जाइए कि हज कर चुकी हूँ। अब तक तो आपको हज कर लेना चाहिए, आप नए नहीं हैं, आप माशाल्लाह कई साल से पुराने हो चुके हैं दीन के इस कमरे में। अपने माल की जेवर की ज़कात की जिम्मेदारी आपने लेनी है, तो फिर क्या पता चला कि आपको अपनी ज़ात पे इतनी सख्ती के साथ दीन को अब नाफिज करना है कि आपका अकीदा भरपूर हो चुका है। जहाँ कमी है अकीदे में, किस मौजू पे क्या ठीक क्या नहीं, तावीज़ हैं कि नहीं और गले में कुछ पहन सकते कि नहीं और कब्रों पे जा सकते, क्लियर कट समझ लीजिए अपने आप को इसके बारे में। फिर उसके बाद इबादत के बाद आप आ जाइए तीसरी चीज़ में। अब तक आपके मामलात की सलाह हो चुकी हो, वालदैन से, औलाद से, ससुराल से, ख़ानदान वालों से, घर वालों से, करीब दूर वालों से डीलिंग फेयर होनी चाहिए। आप हेरा फेरियाँ नहीं, अब चोरी चकारी नहीं, अब इधर की बात उधर नहीं है। अल्लाह आपसे चाहता है, मुझसे भी चाहता है कि हमारी ज़ात पे दीन नाफिज हो। और फिर उसके बाद चौथी चीज़ है अखलाकियात। लोग आपके अखलाक के गवाह बन चुके हों, सारी बद अखलाकियाँ आपसे निकल चुकी हों। ये तो गीबत करती नहीं, इसको क्या हो गया? आप तो ये बोलती नहीं, महफिल में सारा दिन चुप रहती है, ये चुगली नहीं करती, ये ताने नहीं देती, ये हसद नहीं। आपके करीब रहने वाले आपके अखलाक के गवाह बन जाएं, जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियाँ देती हैं कि कान खुलुकहुल कुरान, आज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जब आप इन चार डायमेंशन पे, जिसको एक पूरा ट्री ऑफ इस्लाम कह लें, जड़ें भी आपकी दीन के अंदर रच चुकी हैं, दीन उन पर भी आ गया, तना भी, आपकी ब्रांचेस भी और पत्ते भी, तो आप कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने इस 5-6 फुट के जिस्म पर इकामते दीन कर ली है। इसके बाद देखिए इकामते दीन का दूसरा महाज है आपका घर, घर पर दीन को नाफिज करना। आपके घर को देखकर अब लगे कि ये कुरान पढ़ी हुई और एक मोमिना मुस्लिमा सायहा का घर है, ये बंदगी रब में जुड़ी हुई औरत का घर है, ये हक की गवाहियाँ देने वाली का घर है। कोई चीज़ आपके घर में ऐसी ना हो कि कोई अगर आए तो देख करके कि ये क्या भाई, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। और जब आप इस नज़र से अपने घर को देखेंगे, निकाल कर फेंकिए हर उस बुत को जो अंदर के बुतों को बाहर प्रेजेंट कर रहा है। आपके घर के हाल होलिए, उसकी मैचिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, आपके घर की सफाई सुथराई देख कर पता चले दीन शत्रुल ईमान वाली हदीस जो पढ़ चुकी है। आपके घर में सामान भरा पड़ा इतना कि अल्लाह की बना आपकी जगह नहीं, तो निकालिए, क्योंकि आपने तो पढ़ लिए कुरान में कि कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, हदीस ने मदद कर दी आपकी कि दुनिया को बस थोड़ा रखो, इलम अन्नमल हयात दुनिया। तो अपने घर के A to Z एंट्रिंग डोर से लेकर घंटियां लगी हुई हैं, तो ये कि इसका घर हो गया, और पेंट्रीज तक ऊंचे नीचे ऊपर देखिए कि घर को देख कर महसूस होता है, खुद से सवाल भी कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि तीसरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस दीन आपके ऊपर मेरे ऊपर है कि हमारे मातहतों पर दीन नाफिज हो, जिसमें सबसे पहले आपके बच्चे हैं, फिर मुलाजिम भी हैं, फिर हर वो बंदा घर का जिस पे आपका जोर चलता है। मसूलियत का फितना पिछले पारे में पढ़ के आए हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, इट्स योर राइट कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। अभी वो खुद मुख्तार नहीं हुए, पहले से बैठकर काउंसलिंग कीजिए, डांटने गुस्से करने ऐसी आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल बात कीजिए, क्योंकि जिसका बंदा खाता है उससे दबता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। तो बैठकर बात कीजिए बहुत ठंडे तरीके से, कोल्ड फैक्ट्स के साथ, अपने बच्चों को बताइए कि अब आपको देखकर लोग मुझे बातें करते हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपकी मामा को बातें हों? आप चाहती हैं कि आपके अब्बू को भी बुरा भला कहे? और इस तरह बैठकर बेटियों, बेटों और सब बहुओं से बात कीजिए कि आप हमारी इज्जत रखिए और मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरमी से बात करें, वही बात है कि जख्म दूर करने वाला अंदाज हो के रुई के फाहे पर रखें, बर्तन को मांझने वाला नहीं। और बच्चे बड़े समझदार हैं और ये बहुत आसान हो चुका होगा अगर आपने पिछले पारे पे अमल करके घर वालों को भी कुरान से जोड़ लिया और वो भी इसी नेकियों पे अमल करने लगे। फिर उसके बाद देखिए जो चौथी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीन है, कामत दीन, वह आपके लाइफ स्टाइल में दिखे। और ये कौन सी होती है? खुशियाँ जब आती हैं आपके घर में तो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? आपके बच्चों की शादियाँ, आपके अपने की प्यारों की शादियाँ या दूसरों की शादियों में आपका गेटअप क्या है? इसमें आपका पहनना ओढ़ना भी है, इसमें आपकी ड्रेसिंग भी है। और गमों के मौके पे आप अभी भी बैठकर लोगों की खुशी के लिए चलो कोई बात नहीं, स्वयं की दावत और ये और वो और वहाँ जाके वही करें। क्या आप गम के मौके को भी दावा का मौका बना के लोगों को कुछ सुनाते हैं? यानी लोग आपको देख कर आपके कॉन्ट्राडिक्ट ना करें पढ़े हुए में और सुने हुए में। अब जब ये लाइफ स्टाइल वाली बातें आपके मेरे में हो गई, मैंने अपनी ज़ात तक, अपने ख़ानदान तक हर मुमकिन तरीके से दीन को नाफिज करने की कोशिश कर ली, तो उसके बाद फिर अगला दायरा है कि आपके मुल्क में निफाज़े दीन हो। मुझे यकीन था कि जूँ ही मैंने अकीमुद्दीन कहना है लोगों के जहनों में होना, जी मुल्क में इस्लाम है, पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करो। अब आप तो मैं नहीं कर पा रहे, अब क्या करें? वहाँ से सूद तो आज भी ना ख़त्म हुआ, आज से कब्रें शिर्क तो नहीं ख़त्म हुए, आपका मेरा क्या किरदार है? मेरा तो इरादा और मेरी नीयत क्या है कि फ़र्द की इस्लाह। आप हुक्मरानों को क्यों बुरा कहते हैं? आप अपने आप को देखिए, अगर पिछले पारे की शहादत हक की गवाही घर घर में कायम हो जाए तो क्या होगा? वोट डालते हुए आप अपना फर्ज समझते हुए वोट डालेंगे, क्योंकि आपके पास अब चॉइस कोई नहीं जमहूरियत के सिवा। तो फिर आप अच्छे लोगों को दीजिए, उनको दीजिए जो दीन नाफिज करेंगे, जो वादे भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, और ऐसी अगर इस्लाम के नाम पे कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनी है तो उनको सपोर्ट करें। याद रखिए, एक जुमला लिख लें, शहादत हक का काम बंदा अकेले भी कर सकता है, अकीमुद्दीन अकेले नहीं होती। बस आपके घर वाले ना तावुन करें तो घर पे दीन नहीं लगेगा, इसी तरह मुल्क वाले ना करें तावुन तो नहीं होगा। और इसके लिए टीम की ज़रूरत है, इसके लिए किसी से जुड़ना पड़ता है। आज भी वो लोग जो कुरान पढ़ के सिर्फ बस पढ़ाना चाहते हैं ना, वो कभी भी इकामत दीन तक नहीं आएंगे, बस वो अपनी फ़र्द की नेकियों पर रहेंगे। तो बहरहाल, आपका मेरा फ़र्ज़ इसमें यही है कि हम अपने मुल्क में देखें, जहाँ शिर्क के अड्डे हैं वहाँ बात कीजिए, जहाँ बिलबोर्ड्स आपको बड़े बड़े दिखते हैं आप जाकर उन कंपनीज को मैसेज करें, बात करें, तरीके सलीके से करें कि ये मुसलमानों की चीज़ें नहीं हैं। और फिर इसके बाद आखिरी तरीका है कि इस पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा हो। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलल दीनि कुल्लिही वलव करिहल काफिरून। और यहाँ क्या आया जो पीछे पढ़ कर आए हैं हम, वकफा बिल्लाही शहीदा। इसमें मेरा आपका क्या हिस्सा होगा? आप मैं किस तरीके से पूरी दुनिया में इस ग्लोब पे झंडा लगाएं? एक बच्चे से तो बात ही, उसने तो बड़ा दिलचस्प मामला बताया, कहने लगा मैं जाऊंगा फलां मुल्क वाले के पास, फिर मैं एक ला इला का झंडा ले जाऊंगा, फिर मैं उन्हें कहूंगा आप अपना झंडा उतार के ये लगा दें। एक मासूम बच्चे के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन कभी हुई तो मैं वो बता रही हूँ, लेकिन इसमें फिर आपको मुझे काम करना पड़ेगा। अगर पिछले सारे स्टेप पूरे हैं ना, तो यकीन कीजिए हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लोग तो डिमांड को मांगते हैं, अब मुस्लिम औरतों की डिमांड है तो दुनिया में जहाँ जाएंगे वो मुस्लिम लॉज मानेंगे, फिर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाएगा आपके हिजाब पे, निकाब पे। आप करते नहीं, वो कहते हैं इनको करने ही ना दो, फिर आप दावा सरगर्मियों में हिस्सा लें, बाकायदा सीखिए दावा देना। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जो नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पर डिग्री या कोर्स है उसको हम इल्मुन नाफिया कहते हैं। कैसे आप सबीलुल जन्नत से फारिग होंगे तो आपको नूरुल नूर ऑफर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको इल्म नाफिया में सारी ज़िंदगी पढ़ाया जाता है जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और याद रखिए, जब तक किसी दरख्त से ना जुड़े रहे तब तक पत्ते हरे नहीं रहते और फल नहीं आता। फिर आपने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डालनी है, जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के अंदर डाली थी, जैसे मुआविज़ और मास की माँ ने डाली थी, जैसे हज़रत अस्मा अपने बेटे को कहा करती थी। इसके लिए आपको अपने बच्चों पे काम करना पड़ेगा। जवान होते होते आपके बच्चा एक इस्लाम का भरपूर नुमाइंदा बन चुका हो, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम हो, उसके अंदर ये रूह आ चुकी हो कि इसने दुनिया में कैसे इस्लाम लाना है। वो डॉक्टरी के फील्ड में जाए तो सारे डॉक्टरों को इस्लाम दिखाए, वो अगर लॉयर बन जाता है तो बने, ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों को सिर्फ मस्जिद में बिठा कर हिफ्ज करते हैं तो वो दीन दिखाएंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आपने उनको दुनिया की तालीम ना दी। तो हर मैदान में अमल की तस्वीर बनिए, फिर देखिए, फिर सबसे बढ़ के दुआएं करें कि अल्लाह हमारे ज़रिए दूसरों को हिदायत दे दे, बखा की कैफियत आए आपके अंदर, तो इंशाल्लाह वो होगी आइडियल सोसाइटी। ख्वाब देखने वाले वही होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और उस्ताद का काम ख्वाब दिखाना होता है। मैं तो जो कर सकती हूँ इस मुख्तसर से वक्त में आपको वही दे सकती हूँ, इससे आगे मेरी पहुँच नहीं है। जो करना है आपने करना है, आज बैठकर सोचिएगा, और ख़ास तौर पे वो लोग जो 10 10 साल से कुरान के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक घूम घूम के पीछे ही जा रहे हैं, घूम के पीछे जा रहे हैं, अगला स्टेप क्यों नहीं है? अगली सीढ़ी पे पाँव ना रखेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इस बात को सुनना आसान करे। आप देखेंगे कि आज के पारे में ये जितनी बातें अभी आपसे हो गई गैर महसूस तरीके से आपके पास आएंगी। बस आप देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सूरत नूह में आप पढ़ेंगे, 950 साल तक शहादत हक की गवाहियाँ देते रहे लेकिन इस्लाम नहीं नाफिज हो सका। आप हज़रत मूसा का किस्सा पढ़ेंगे इसी पारे में, फिरौन के सामने तबलीग तक रहे। या एक बड़ा प्यारा सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रेडिट देना चाहूँगी जो पिछले अम्बिया कराम से आपको मुख्तलिफ करता है। हज़रत मूसा से तबलीग तो हुई, शरीयत नाफिज नहीं हुई। हज़रत ईसा के साथ भी ये मामला ना हुआ, चंद हवारी थे जिन्होंने उनके पैगाम को आगे लिया। देखिए, वो सिर्फ मिशनरीज पे बात करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ना सिर्फ है कि बंदगी रब लोगों ने सीख ली, सहाबा बंदगी का मजमुआ थे, उन्होंने शहादत की गवाहियाँ दी। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में क्या कहा कि इस पैगाम को लेकर दुनिया में फैल जाओ, हज्जतुल विदा का खुतबा देखिए। और जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से विसाल करते हैं तो क्या होता है? मदीना खाली होने लगा है क्योंकि शहादत हक की गवाहियाँ देनी थी। और जब गए गैर मुस्लिम मुल्कों में गए, ये हज़रत उमर के दौर में 23 लाख मुरबा मील पे इस्लाम क्यों आया? क्योंकि हर फर्द एक इस्लाम का दिया था। जिस मुल्क में जाते इनके कौल अमल फेल को देख कर लोग मुसलमान हो जाते थे। मैं दुख के साथ एक जुमला बोल दूँ, हम आज जो वेस्ट में रहते हैं, तीसरी चौथी चौथी नस्ल है आपकी मेरी यूरोप में। अपने पीछे जाकर देखिए, अगर हम बंदगी रब में डूबे होते हैं और शहादत हक का काम किया होता, हमारे कॉल फेल में तजाद ना होता, आज इन मुल्कों के मुकद्दर संवर चुके होते। ये कोई डंडे के जोर पे काम नहीं होते, ये अखलाक और किरदार साजी से, जिद्दत किरदार की ज़रूरत है। आज हम अपनी नस्लों को पहले से इतना मरगूब करके रखेंगे तो क्या बनेगा? तो अल्लाह के नबी का ये कारनामा है कि आपने दीन कायम किया। इस ज़मीन पर सबसे पहली मुस्लिम रियासत मदीनातुल मुनव्वरा है। अगर आज के दौर में आप अपने ही मुल्कों को देखें तो अल्लाह ने आपको मुझे मौका दिया, डेफिनेटली वहाँ इस्लाम नाफिज होगा। आज तक अगर आप गैरों के कानून को अपने मुल्क में नाफिज करेंगे, कहाँ अकीमुद्दीन? और जब किसी चीज़ के हासिल करने का मकसद हासिल ना किया जाए तो फिर वो चीज़ छिन जाती है। आप मिसाल है कि वॉशिंग मशीन घर में लाएं और उसमें कपड़े धोने की बजाय उसको सिर्फ एक अलमारी बना लें, कितने दिन चलेगी आपके घर में? तो आज ज़रूरत है टीम वर्क की, जुड़ने की। वर्ल्ड लीडर तोहफों में मिलते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा यूनाइट हो जाए, इन सारे कामों से गुजर जाए, अल्लाह ने ऐसा प्यारा लीडर आपको देना कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो वर्ल्ड लीडर बन के पूरी दुनिया में नुमाइंदा बनेगा। हदीसों में उसका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जब कुर्बे क़यामत के आएंगे दौर में, और वहाँ फिर दीन का निफाज होगा। तो अगली पिछली चीज़ों को पढ़िए, समझिए, फिर बातें समझ आएंगी। अल्लाह ताला इस वक्त को भी कबूल करे। अब देखते हैं कि इस पारे में से हमने क्या छलकियाँ लीं, ग्लिम्स ऑफ पारा। बेहतर अमल करना है, सीधे रास्ते पे चलना है, रब की तरफ रजू करना है, अल्लाह ताला से डर कर रहना है, पिछले वाक़यात से सबक लेना है, रोज़े जज़ा को सच मानना है और हशर का यकीन हासिल करना है, मग़फ़रत की दुआएं करनी है, हिदायत पे साबित कदम रहना है, अल्लाह ताला की बात को फैलाना है यानी दूसरे लोगों तक उसको पहुँचाना है, और इसी तरह से अल्लाह ताला की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करना है, अपने आगे के लिए भलाई भेजना है और रब की बड़ाई को बयान करना है, क़यामत के दिन के बारे में जानना है ताकि हम इस पे अमल भी कर सकें, गौर व फिक्र कर सकें, और अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसान करें। अल्लाह ताला की बातों को सच मानना है, दुनिया की कोशिशों की उखरवी जज़ा के बारे में जानना है ताकि दिल की खुशी से कोशिशें करें। आज लोग मारे बांधे दीन का काम कर भी लें तो उनको ये नहीं पता होता कि इसके बाद मिलना क्या, डाउट्स ही रहते हैं, पता नहीं हमें कुछ मिलना कि नहीं मिलना। भाई क्यों नहीं मिलना आपको? ये कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के लिए कुछ करें और अल्लाह ताला आपकी नाकदरी करे? असल बात है कि आपने इस चीज़ को लेना है और फैसले के दिन की तैयारियाँ करना है। ये पूरा पारा, इसमें हम 11 सूरतें करने वाले हैं। सूरत मुल्क तौहीद इसका मौजू है, किसी को तबलीग करें ना, तो ये पारा बड़ा प्यारा है। पिछले सालों में मैंने इस पारे का थीम अक्सर दावा के साथ जोड़ा, दावत इल्लाह का तरीका, मतलब सूरत मुल्क का पैगाम है अल्लाह की बड़ाई। वही बात है कि इम्तिहान लेने वाले की शान बुलंद की जा रही है। सूरत कलम का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पहले में ताल्लुक बिल्लाह है तो दूसरे में ताल्लुक बिर रसूल है। उसके बाद आप देखें तो सूरत अल हाका में आपको क़यामत दिखाई जा रही है, कह लीजिए ईमान बिल आखिरा पुख्ता होगा। चौथी सूरत अल मारिज आएगी, जिसमें एक मुसलमान का एक लीस्ट मिनिमम पैकेजेस है। मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि मोमिनीन बनना, फिर इबादुर रहमान बनना, तो जो लीस्ट थिंग्स किसी नए मुसलमान से मतलूब है, वो इंशाल्लाह हम सूरत मारिज में पढ़ने वाले हैं। यानी नए बंदे को इस तरतीब से दावा दीजिए कि पहले अल्लाह से जोड़ा, फिर रसूल से जोड़ा, फिर क़यामत के बाद क्या होना है यानी आखिरत को दिखाना, फिर उसके बाद उसको छोटी छोटी नेकियों पे लाइए। उसके बाद देखिए सूरत नूह आएगी, जो लाए दाए दीन का किरदार, कैसे बेलॉस होकर रिजल्ट ओरिएंटेड हुए बगैर लोगों को अल्लाह से जोड़ता है। फिर छठी सूरत हम पढ़ेंगे सूरत जिन, एक ही कोर्स करने के बाद कह लीजिए एक सिटिंग के बाद दाए दीन बनते हुए दिखते हैं। जिसने पैगाम गौर से सुन लिया फिर उसके लिए तो बात आगे करने में कोई एतराज़ नहीं है। और उसके बाद देखिए कि सूरत मुजम्मिल, ये है एक दाई दीन की रात का वक्त, कोमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को अल्लाह के सामने खड़ा होगा। और आठवीं सूरत हम पढ़ेंगे सूरत मुद्दसर, ये है कौम फानजर, और ये ऐसा कौम है कि जो अल्लाह के नबी पे आया तो आप उसके बाद 23 साल खड़े ही रहे। इंजार, यानी दिन में लोगों को अल्लाह से जोड़ना है और रात को खुद अल्लाह से जोड़ना है। और ये कौम जब जिंदगी में आता है, याद रखिए अपने बेगाने हो जाते हैं, तनहाई शुरू हो जाती है, सब चीज़ें छुट छुट कर इंसान सिर्फ चंद लोगों में रह जाता है, लेकिन ये कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद नवीं सूरत हम पढ़ेंगे सूरत क़यामा, जिससे आगे तक कह लीजिए कि 30वां पूरा पारा क़यामत के मौजू पे होगा। और फिर उसके बाद सूरत दाहर, जिसमें जन्नत का रंग गालिब है, और सूरत मुरसलात में जहन्नुम का रंग गालिब है। तो ये मेरी उंगलियों पे लिखी हुई चंद बातें थी जो मैंने सोचा कि आपको दावत इल्लाह का तरीका भी सिखा दूं। कभी भी कहीं दर्स दें तो इसी तरतीब के साथ किसी बंदे को लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी बात में असर भी होगा। हम बेवक्त की बातें करके, जो बातें अभी करनी भी नहीं थी वो करके जब दावत दे दिला कर आएंगे तो गड़बड़ होगी। और इस सारे रास्ते में फिर दुश्मनियाँ तो होंगी, मोहब्बतों के जिहाद भी देने पड़ेंगे, आप उनकी दुनिया बनाएंगे, वो आपकी दुनिया बिगाड़ेंगे, और इस तरह करते कराते ये तो फिर चलता ही रहेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र से गुजर जाओ आफियत के साथ। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसान करें। आइए देखते हैं सूरत मुल्क में हमारे लिए क्या है। 30 आयतें हैं, 67 नंबर की सूरह, इसकी फजीलत सुन लीजिए। ये सूरत अजाब कब्र से निजात दिलाने वाली है। तिरमिज़ी की रिवायत है 2890, यानी कब्र में अजाब आएगा तो ये सूरत इंशाल्लाह रुकावट बनेंगी। हर रात को इसको पढ़ना सुन्नत रसूल है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात मिलती है तिरमिज़ी में 2892। ख़ास तौर पर इसमें सूरत सजदा, जिसको हम पीछे देखा है 22वें बारे में, उसका भी जिक्र है। और ये सूरत रोज़े क़यामत हमारे लिए शिफात करेगी। आपने फरमाया 30 आयतों की एक सूरत है, ये शिफात करेगी यहाँ तक कि उस बंदे को बख्श दिया जाएगा। शाफ़ी मुशफ़ा कहते हैं इसे को। सिफारिश तो कोई भी कर सकता है ना आपकी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई मान ले, लेकिन इस सूरत की सिफारिश को मान लिया जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है ये 2891। तो इतनी प्यारी सूरत पढ़ने से पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुव अलअज़ीज़ुल गफ़ूर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आसमाए। ये है कमरा इम्तिहान की बात। क्या आसमाए? कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, यानी इखलास के साथ और सुन्नत के तरीके पे। और वो गालिब और बख्शने वाला है जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में तू कोई बेजाबतगी ना देखेगा। कभी आपको सुराख दिखा है कोई डिसऑर्डर कायनात में? पत्ते भी गिरते हैं तो इतने सलीके से गिरते हैं। तो फरमाया हल तरा मिन फुतूर। ये है ये कायनात जो अल्लाह ताला ने आपके मेरे सामने रखी। इस तरीका सिखा दिया, कामों को हुसन से किया करो। डिसऑर्गनाइज ना हो तुम्हारी अलमारियाँ, तुम्हारे घर खराब ना हो, तुम्हारी गाड़ियों में गंद और कचरा ना भरा हो, तुम्हारे ऑफिस टेबल के ऊपर कागज़ ही कागज़ ना हो। तो खलकल मौत अवल हयाता, देखिए ज़िंदगी और मौत का क्या खूबसूरत सफ़र है। मौत और हयात अल्लाह की तरफ से है, इंसान को नेकी और बदी करने का इख्तियार दिया गया इस दुनिया में। 30वें पारे में इस पर बहुत बात होती है। फिर अहसन अमल करना पड़ेगा, और अहसन अमल से मुराद कसरत आमाल नहीं लिखिए। बिदत अहसन अमल नहीं होती, क्योंकि उसमें कसरत है, ज़्यादा करो, गिन गिन के पढ़ो। आप 1,25,000 दफ़ा जब आयत करीमा पढ़ेंगे तो बताइए उसमें कहाँ खूबसूरती रह जाएगी। तो आप उस स्टूडेंट को देखिए जो बालिश्तों से नाप नाप कर सवाल का जवाब दे। बस वह थोड़ी सी जगह दी होती है कि इसके अंदर ही जवाब लिखना। वो पकड़ के अलग 10 पेपर अटैच करे, फाड़ दीजिए उसको, कोई नहीं लेगा आपके। तो वो लोग जो आज ज़्यादा करने के शौक में ऑथेंटिसिटी को छोड़ देते हैं और ये नहीं देखते कि इस पे कुरान सुन्नत की मोहर है कि नहीं, तो उनके अमल आसन नहीं होंगे। फिर आसन अमल से मुराद बेहतर और अच्छा अमल है, वक्त और हालात के मुताबिक जो बेहतरीन हो। फिर इसमें इखलास और सुन्नत के मुताबिक करने के साथ साथ ये भी शर्त है कि इस बात का यकीन हो कि रोज़े क़यामत मेरे अमाल गिने नहीं तोले जाएंगे। गिनने की बात कम है, आज हम गिन गिन के नेकियां करते हैं। इस्लाम का ये मिजाज मुझे तो कहीं नहीं दिखा, अल्लाह चाहे किसी को दिखता होगा। इतने मुश्किल वजीफे गिन के, ये पहले ये वो बाद में, इसको ऐसे करिए ये फिर इस तरह पढ़े। मैं सोचती हूँ कि जो बेचारे गिनती नहीं जानते, जो सीधे बूढ़े लोग हैं, वो फिर ये अमल कैसे करेंगे। तो दीन को आसान बनाइए, और अल्लाह ताला आपको मुझे बता रहा है कि ज़िंदगी और मौत तुम्हारे लिए आजमाइश है। जब तक रूह जिस्म में कैद है, इस वक्त हर इंसान कमरे इम्तिहान में है, और हर नेमत इम्तिहान का पर्चा है। चंद जुमले लिखिए, आपका हर बच्चा आपके इम्तिहान का एक पर्चा है। हर नाम के साथ लिखिए कि मेरे चार पर्चे हैं। एक, मेरे पर्चे का नाम है अब्दुल्ला, दूसरे पर्चे का नाम है अब्दुर्रहमान, तीसरे पर्चे का नाम है आयशा सिद्दीक़ा, और चौथे पर्चे का नाम है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हर एक अपने बच्चों का नाम रख लीजिए, इनको एहतियात से कीजिए। आप एक बच्चे को फौज करा दें, हाफिज़ भी बना लिया, आलिम भी बना दिया, खूब मेहनत की, बाकी तीन फेल हो गए तो क्या करेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि मतलूब क्या है मोमिनीन से, अहसन अमल, और बदला है बख्शिश और जन्नत। तो अल्लाह ताला आपको मुझे सही रुख पे काम करने की तौफीक दे। देखिए कि अल्लाह की इस कायनात में कुछ खलल नहीं। सुमर जेल बसरा कर रतीन, दोबारा नज़रें डाल कर देख ले, क्या कोई शगाफ भी नज़र आया। यानी एक दफ़ा हो सका है तुम्हें आसमान में कोई सुराख नहीं दिखा, तो दोबारा देख लो। फिर दोहरा कर दो दो बार करके देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील व आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों और सितारों से जीनत वाला बना दिया, और इन्हें शैतान के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोजख के जलाने का अजाब तैयार कर रखा है। कुरान पाक की हिफाजत के ये सारे मरहले हैं। अब देखिए कि सितारों से जो तीन काम हमने इस पूरे कुरान में पढ़े, वही तीन काम अल्लाह ताला इस कुरान से भी लेता है। कैसे? बस आप देखिए कि सितारे रास्ता दिखाते हैं, तो ये किताब के हुदल्लिन्नास, हिदायत देने वाली है। फिर इसी तरह से आप देखिए सितारे हुसन है ना, जीना जैन्नस समात दुनिया भी मसाबी, तो इसी तरह कुरान आपके मेरे सीने के ईमान की जैयत है। जैन्ना लिकुलूबिहिम, सूरह हुजरात में भी आपने पढ़ा कि अल्लाह इनके दिलों को ईमान से मुजैन कर दे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सितारे शैतानों को भगाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी तरह कुरान पढ़ने वाले से भी शैतान दूर दूर भागते हैं। तो क्या पता चला? सूरत मुल्क का आगाज़ दावत के तरीकों का खूबसूरत तरीका है। तौहीद से आगाज़ कीजिए, जिसको भी दावत दें, बच्चे को दें या नॉन मुस्लिम को दें, या इवन अपने बेअमल जौज को दें, जिसने बेचारे ने शुरू से दीन सीखा ही नहीं सिवाय रस्मी बातों के सुनने के, तो पहले उसका ताल्लुक बिल्ला मजबूत करें। फिर मकसद हयात की पहचान कीजिए, उनको भी दीजिए कि हम जिंदगी में क्यों हैं, हमारा मकसद क्या जीने का। फिर शऊर बेदार करने वाले सवाल कीजिए, कौनी आयतें यानी कायनात पे गौर करें। वॉक करने निकल जाएं ऐसे लोगों के साथ तो पत्ते फल फूल दिखाते रहे। बच्चों को तौहीद सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको ओपन एयर में ले जाएं और गौर व फिक्र कराइए। सूरत मुल्क के आगाज़ में अल्लाह ताला ने इंसानियत को संजीदगी से ज़िंदगी गुजारने के असूल दिए, और गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है इस वक्त आसमान पर गौर करवा के। और अपने रब के साथ कुफर करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। तो जहन्नम इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे टू लिव। अल्लाह ना करे किसी का वहाँ का घर आबाद हो। अल्लाह ने हम सब के दो दो घर बनाए हुए हैं। हदीस में आता है कि जन्नती जन्नत में जाएगा तो उसको जहन्नम का घर दिखाया जाएगा, कि शुक्र कर ले कि यहाँ नहीं गया, इधर आ गया। और इसी तरह जहन्नमी को जन्नत का घर दिखाया जाएगा ताकि वो देख ले कि अगर थोड़ी सी मेहनत करता ना, अहसन अमल कर लेता ना, तो ये जन्नत उसकी थी। और कितना दुख हो बंदे को उस वक्त किसी के पास अपनी चीज़ देखकर जिसकी उसको ख़ुद भी अशद ज़रूरत थी। इसलिए अब जहन्नम के चंद मंज़र इज़ा लकू फ़ीहा समीउ लहा शहीकम वही यतफूर, जब ये इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे, वो जोश मार रही होगी, करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए। जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, इससे जहन्नुम के दारोगा पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, हर रात ये जुमला मेरे शऊर पे ज़र्ब लगाता है, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई ना आया था। रुकिए और सोचिए, पहली दफ़ा दौरे कुरान आपके सामने हुआ, आपने पहले कभी सुना नहीं, आज फिर हुज्जत बन गई है। जब तक नहीं पता तो नहीं, और जिन्होंने अब 17 दौरे कुरान अटेंड कर लिए सिर्फ नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म में बिलफर्ज, और 10-12 दूसरों के भी सुने होंगे, उनके लिए क्या रुख्सत हो सकती है। अलम यातिकुम नज़ीर, तो इस दीन को कायम कीजिए, वल्लाही ये सिर्फ किताबों के नोट्स नहीं है कि आप 4 दफ़ा तफसीर सुन के इसके 4 फोल्डर्स बना लें, इसको जिस्म पे लाएंगे अल्लाह की रहमत से आपकी ज़ुबान खुलेगी, आपका फहम मजबूत होगा, नपी तुली बात मुँह से निकलेगी, और इधर उधर की बातें जमा करके डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स देकर आने वाले लोगों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, और कहेंगे इसको भी गौर कीजिए, वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, यानी नूह की कौम उस दिन जवाब देगी कि आए थे नूह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने वाले मक्का वाले कहेंगे, आया तो था, बड़ा प्यारा बद्रे मुनीर था, सादिक और अमीन था, लेकिन हमने इसे झुठलाया। और आज भी याद रखिए, जिसके पास कोई नुमाइंदा पहुंच गया दीन का, दाई ये दीन है, वो एम्बेसडर ऑफ इस्लाम है, आज तो घर बैठे मिल रहे हैं, लोग तो ढूंढने जाते थे इल्म को, कितना आसान हो गया दीन लेना, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़ौक को शौक से दीन ले रहे हैं। मैं तो खुश हूँ इस पे कि अल्लाह ने थोड़ा सा फारिग कर दिया लोगों को, उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर की सदी है, अल्लाह ताला बस हमारा कहीं नाम डाल दे। अक्लमंद वो होता है जो थोड़ा पढ़े सूदा पढ़े, ताकि हम राउंड अबाउट पे घूमते ही तो नहीं रहे, कुछ लोग आज भी इल्म के दम पे घूम रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा आगे क्या करना है, वो घूमते ही रहते हैं, एक काम किया वो बार बार कर रहे हैं, फिर कहते हैं बड़ी नेकी का काम है। आगे चलिए, गौर कीजिए, देखिए तरतील की बात आ रही है, जिस बारे में गौर व फिक्र भी कीजिए, जिस बात भी हो उसको समझ भी रहे हैं, और उसको अपनी सी पूरी कोशिश के साथ सही करें। लोग कहते हैं हम तफसीर नहीं करेंगे, हम पहले तजवीद ठीक करें, 6 साल से उनका यही जवाब है, कई कुरान पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, भाई आपको क्या हुआ, नहीं वो मुझे लगा कि मेरी तो तजवीद ही नहीं ठीक, मेरी तो हराम गलतियां, अब मैंने कोर्स छोड़ दिया, पहले मैं ज़रा फ़लान तजवीद का कोर्स करूँ। मैं कहती हूँ आपको किसने ये मशवरा दिया, वो फ़लाँ ने दिया, वो कुरान पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा आपका गलत है, आप छोड़िए ये तफसीर कोर्स, मेरे पास आएँ, बस इतने से पैसे दें, मैं आपको तजवीद और मैं आपको साथ तर्जुमा भी सिखा दूंगी, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और कुछ ग्रामर की भूल भुलैयों में उलझते हैं, ग्रामर पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे, सरफ व नहव में खोने वाले, अबवाब में खोने वाले हिदायत से दूर होते हैं, सारी ग्रामर भी आपको आ गई फरफर, क्योंकि अबू जहल की ग्रामर अच्छी नहीं थी, अब्दुल्ला बिन उबई को अरबी लैंग्वेज नहीं आती, आज एक और भी इश्यूज है, हम अरबिक लैंग्वेज सीखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाके सीखते हैं नॉन मुस्लिमों से, कुरान कोर्स नहीं किए जाते, क्यों, कि वहाँ एक तो डिग्री नाम बड़ा, और फिर उसके बाद किसी जगह लेक्चरर लग जाएंगे किसी भी अरबिक लैंग्वेज के पढ़ाने वालों में, और लैंग्वेज बड़ी अच्छी होगी, तो वल्लाह ही ये शोशे हैं। तरतीब दीन की वही है, जिसने ये इख्तियार किया आप उसको इख्तियार कर लें, जिसके साथ आपका दिल लगा हुआ ना जाकर उसको ज्वाइन करें, और एक जगह जम के पढ़ें, इधर उधर भटकना, अगर आपको ये पूरा पैकेज कोई इदारा दे रहा है आज के दौर में किसी लैंग्वेज में आप बात सुनना चाहते हैं, आप उसको फिर फॉलो कीजिए। एक डॉक्टर ऐसे ना बने, आज फातिमा जिना कॉलेज में है तो कल कनेट कॉलेज में दाखिला ले ले, और परसों अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ले ले, क्या वो डॉक्टर बनेगा, ये हमारा शोशा, ये डी ट्रैक करना है शैतान का हमारा, कि ये इकामत दीन तक ना पहुँचे, और आप देख लीजिए ज़्यादा है ही वो, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम कर दे। तो फरमाया कि हमारे पास आए तो थे कि हमने जुटला दिया, और देखिए अगला जुमला कितना ज़बरदस्त जुमला है, और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, ये होता है एंड पे, छी लुक बिजी डू नथिंग, जो ज़्यादा सुनते हैं ना वो सुन हो जाते हैं, कुछ नहीं जी अल्लाह कुछ नहीं कहता, ये इन्होंने दीन सख्त किया हुआ, ये टोन, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो, और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते, ये हसरत आज अपनी निकाल लीजिए, लो कुन्ना नस्मऊ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, रात को आज पढ़ेंगे ना तो इस पे गौर कीजिएगा, काश हम सुनते होते या अक्ल रखते तो दोस्तियों में शरीक ना होते, उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, अब ये दोस्ती दूर हों। कुरान का मिजाज सुनने वाला है, पढ़ने वाला नहीं, आज जो सुन नहीं रहा ना कुरान को वो कभी भी अमल नहीं कर सकेगा, आगे पढ़ाना, और जो पढ़े बगैर पढ़ा रहे होते हैं अल्लाह माफ़ करे ऐसे उस्तादों से, अल्लाह मुझे भी बचाए और आपको बचाए, कि अधूरा पढ़कर पूरा पढ़ाने की कोशिशें करने वाले उन्होंने तो फुल स्टॉप लगा दिया अपने ही पढ़ने वालों को। तो याद रखिए, ये सारी जिंदगी का मामला, फातरफू भी जम भी हिम, जहाँ जम वाहिद आया है, एक जुर्म है सिर्फ। उलमा कराम कहते हैं ये नहीं कहा फातरफू भी जुनू भी हिम, जहन्नुम के अंदर डाले गए और कह रहे हैं बस एक गुना है, और पीछे पढ़ लिए क्या गुना है, कुरान से कटे हुए थे, टूटे हुए थे। इसी के बाद बाकी सारे गुनाह और नेकियों का सफ़र शुरू होता है। फरमाए फसुख अली असहाब सईर, इसके बरक्स आप जैसे खूबसूरत लोगों की बात, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबि लहुम मग़फिरतुम व अजरुन कबीर, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, इनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है, अल्लाह हमें इनमें ही शामिल कर दे। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी बखूबी जानता है, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी हो। माँ बड़े प्यार से बच्चे को कहती है, बात क्या? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं। कहते रात को रोई थी, ये आंखें किस सूजी हुई है बता, मैं नहीं जानती, मैं तेरी माँ हूँ, बता मुझे। बस इस टोन को इस आयत के ऊपर रखकर आंसू बहा लीजिए। एक माँ जान जाए कि बच्चे के दिल में क्या, एक दोस्त जान जाए कि दोस्त में क्या, एक बीवी शौहर के घर में आकर चाबी रखने के अंदाज से समझ जाए कि इस वक्त इनका मूड क्या है, तो वो रब ना जाने जिसने पैदा किया। रोज रात को जरूर इस आयत पे आप गौर करके सोते होंगे, अगर आपने इसको तर्जमे से पढ़ा हुआ है, और अगर सिर्फ रस्मी भी पढ़ रहे हैं तो आज गौर कीजिएगा। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, ये जुमला आपको मुझे क्या कहता है, वो तो सीने की पोशीदगियों को भी बखूबी जानता है। तो याद रखिए, कुरान आपके लिए कन्वर्सेशन बन जाती है, एक डायलॉग बन जाता है, आपका द बेस्ट फ्रेंड बन जाता है कुरान, जब आपको ये समझ आता है। आप सूरत मुल्क को 4 मिनट में थोड़ी पढ़ेंगे, रात को आधा घंटा लग जाता है, आप तो बातें करके मुस्कुरा के सोते हैं रात को, जी अल्लाह जी बिल्कुल सच कहा आपने, मुझे समझ आ गई। जो दोस्तों में बात के अंदाज होते हैं वो कुरान से ताल्लुक़ बनते हैं, जब आप लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस कुरान के तफसीर कोर्सेज में कुरान लफ्ज़ी तर्जमे के साथ क्यों सिखाया जाता है, कि फिर आप चलते फिरते बातें करें अल्लाह से, और ये जो करता है या जिसको ये नसीब होती है उसी के पास जीने का हुसन है, बाकी लोग तो सिर्फ बेकार की काट रहे हैं। तो देखिए कि हमने अभी तक जो देखा, पहली आयतों में 12 आयत तक, पहली बात है कि अल्लाह की किताब और क़यामत का इनकार, गुस्से से खौलती हुई जहन्नम की आग उनका ठिकाना होगी, कारकर्दगी के मुताबिक इंजाम है, जो यूँ मनून बिल गैब करते हैं और अल्लाह का खौफ रखते हैं वो जन्नत में जाएंगे, मगफरत होगी, अबदी जन्नत और अजर असीम है। अब अल्लाह ताला कायनात में गौर व फिक्र सिखाते हैं, और आप सोचा करें कि कुरान में इतना क्यों गौर व फिक्र कराने का मौका दिया जाता है, और हम उतना ही बाहर की दुनिया से कटते जा रहे हैं दिन ब दिन। हुवल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ध ज़लूला, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त और मती कर दिया ताकि तुम इसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोजियां खाओ, इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना है। कल से जब वॉक पे निकले ना, तो ज़मीन को इस आयत की रोशनी में देखिए, कितना वजन है इस पे, कितने लोग इसको रोनते हैं, लेकिन कितनी आजीज है। मैंने भी ज़मीन बनना है, जितना मर्जी मेरे ऊपर बोझ को डाले, डांट लो मुझे, गुस्सा कर लो, मैंने नहीं बोलना। और इसके अंदर से रिस्क निकलते हैं, तुम भी इसी तरह कल निकलोगे। आप देखिए, क्या कायनात किताब नहीं बन जाती उस बंदे के लिए जिसको किताब समझ आ जाए, क्योंकि वो अल्लाह का कौल है, ये अल्लाह का फेल है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमानों वाला तुम्हें ज़मीन में धसा दे और अचानक ज़मीन लरसने लगे, या क्या तुम इस बात से निडर हो गए हो कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसाए, फिर वो तुम्हें मालूम ही हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। ये आसमानों वाला कौन है? पता चला कि अल्लाह तआला ऊपर है, तो ज़मीन भी उसकी, आसमान भी उसका। ज़मीन पर चले तो खौफ खाएं कि कहीं फटे और मुझे अंदर ना ले जाए, और कभी खुले आसमान के नीचे जाएं तो खौफ कीजिए कि ऊपर से पत्थरों की बारिश न शुरू हो। और इनसे पहले के लोगों ने भी झुठलाया था, तो देखो तो सही इन पर मेरा अजाब कैसा हुआ, क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते, इन्हें अल्लाह रहमान ही हवा और फिजा में थामे हुए है, बेशक हर चीज़ इसकी निगाह में। इस आयत पे गौर करके लोगों ने जहाज बना लिए। कभी आपको मौका मिले, आप वो सीट लीजिएगा जिसके साथ विंग्स होते हैं, ऐसे खुलते और बंद होते हैं पर, कभी अंदर से छोटे बड़े, और लिखा भी होता है इससे आगे आप नहीं चल सकते, तो आपको यह आयत याद आ जाएगी कि परिंदे जिस तरह पर खोलते और बंद करते हैं, आज इंसानों ने इसी से उड़ने वाली मशीनें बना ली। तो फिर आपके लिए तो जहाज़ में बैठने में भी इंजॉयमेंट होगी, सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके, काफिर तो सरासर धोखे ही में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुमको रोज़ी देगा, क्वेश्चन आंसर है, अपने आप से पूछिए। बल्कि इनकार करने वाले तो सरकशी और बेदखने पर अड़ गए। अच्छा वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो मुंह के बल ओंधा होकर चले, या जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर चल रहा हो? कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, लेकिन शिकवा कलीलम्मा तशकुरून, थोड़े ही हो और थोड़ा ही है जो तुम शुक्र करते हो। ये आयतें बंदे को शर्मिंदा कर देती हैं कि इंसानों में से ना शुक्रे लोग ज्यादा होते हैं हर मामले में ही, अल्लाह के भी और बंदों के भी, और शुक्रगुजार बंदे कम होते हैं। अल्लाह हमें थोड़ों में कर ले। एक कोई नेक शख्स थे तो ये दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर ले, अल्लाह थोड़ों में कर ले। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उस पर उन्होंने यही जवाब दिया कि थोड़े ही लोग शुक्रगुजार होते हैं। तो अल्लाह तआला के ये सवालात और इंसानों का हाल ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा। दुनिया को जो लोग दारुल अमल बनाते हैं ना, कमरा इम्तिहान समझते हैं, फिर वो अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला हिदायत याफ्ता मोमिन बन जाता है ऐसा शख्स, और मकसद हयात से आगाह हो जाता है। इसके बरक्स जो दुनिया को फन फ्लैक्स पार्टी प्लैक्स समझे, वो हैवानी सतह पे ज़िंदगी बसर करता है, ख्वाहिशात के तकाजे निभाने वाला होता है, हिदायत से बहुत दूर होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मकसद हयात से गाफिल होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुनिया की हकीकत को जब बंदा नहीं समझता तो इसको सूरत मुल्क आयत 22 में गाफिल कहा गया, मुकिब बन अला वजही ही। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आयत लिख लीजिए, 22 आयत है। आप देखिए कि दो लोग हैं, अफा मैं यमशी मुकिबन अला वजही ही अहदा अम मैं यमशी सवीयन अला सिराते मुस्तकीम। ये जो बिल्कुल नीचे देख रहे हैं ना पाँव को, ये दुनियादार है, मटीरियलिस्टिक। याद कर ले सूरत अल अराफ की वो आयतें, अखलदिल अर्दी। तो जो सिर्फ नीचे ही देखे, बतन फर्ज और पेट और खाना पीना ही है, वो मकसद से गाफिल है। इसके अला बरक्स सवीयन अला सिराते मुस्तकीम वाले ही सीधे रास्ते पे और यही जाएंगे, सिराते मुस्तकीम से होते हुए सबीलुल जन्ना का रास्ता इख्तियार करते हुए जन्नत में जाने वाले। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला में गाफिल के मुकाबले में आकिल बना दे। इनकी ज़िंदगियां बामल होती हैं, सादा और आसान ज़िंदगियां होती हैं, जिसे इल्म है कि दुनिया की लज्जतें आरजी हैं और आखरत के मज़े दायमी हैं, वो क्यों ना फिर इसको मुख्तसर रखे। इसके बरक्स जो गाफिलीन होते हैं वो खिलाफ सुन्नत ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान इल्म के बगैर दुनिया को सिर्फ एक फ़न की जगह समझते हैं, और दुनिया में गर्क हैं और आखरत से बेखबर हैं। ढूंढिएगा ज़रा आपको अपने इर्द गिर्द ज़्यादा लोग कैसे दिखते हैं। और सवाल और जवाब एक ही है कि जिसने कुरान पढ़ लिया वो तो बदल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा कि उसको तो वही अच्छा लगता है जो सब करते हैं। फिर फरमाया, कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और इसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, क़यामत की तरफ इशारा है। आप कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। वो तालिब इल्म जो सिर्फ डेट शीट पूछता रहे और तैयारी ना करे, सिलेबस ना खरीदे, खोले भी ना, ये है वो बंदा। तैयारी करो, क़यामत की जब होगी आ जाएगी, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर वक्त तैयार रहिए इस पर्चे के छिनने से जो इस वक्त आपके मेरे हाथ में है। अभी सहीफे खुले हुए हैं, अभी कलम चल रहे हैं, अभी अनडू कर सकते हैं हम अपनी गलत चीज़ों को, कल नहीं हो सकेगा। फिर इसकी PDF कॉपी सेव हो जाएगी, अनचेंजेबल, जिसको कोई एडिटर भी चेंज नहीं कर सकेगा। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पा लेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। आप कह दीजिए अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बाहर सूरत ये तो बतलाओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। करें बड़े बड़े दावेदार कि मैं फुलां को जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा, वो इतनी प्यारी थी, वो इतनी खिदमत करती थी दुनिया की, वो तो इतनी बड़ी मलकार खुईन थी। अल्लाह कहते आओ मुकाबले पे, मेरा घर है तुम्हारा नहीं। बाद लोग चौकीदार बनते हैं, हम लेके जाएंगे लोगों को जन्नत में। अल्लाह कहते अपने घर में तो तुम किसी को लेके ना जा सको, जन्नत तुम्हारा घर है, ये तो मेरी मर्जी से जाएंगे लोग जिनको मैं जाने दूंगा। आप कह दीजिए वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अन करीब मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बतलाओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी ले आए, है कोई ऐसा। फमैयातीकुम बिमाइन मईन, तो आज देखिए दुनिया में ड्राउट है, खुश्कसालियाँ हैं, थल का इलाका देखिए, थर को देखिए, अफ्रीका के दनान इलाके को देखिए, जाएं दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग, खुश्क ज़मीनों को पानी से तर करके दिखा दे, नहीं कर सकते। तो फिर एक पानी का ग्लास पकड़ कर भी आप अल्लाह को याद कर सकते हैं, कहाँ हम वॉशरूम्स में इतना पानी बहाएं। तो ये थी सूरत मुल्क, अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत। आपने फरमाया, तबारक अल्लज़ी सूरतुल मुल्क अजाब कब्र को रोकने वाली है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2936। अल्लाह ताला इसको हमें आदतन नहीं इबादतन और गौर व फिक्र से हर रात को पढ़ने की तौफीक दे। छोटे छोटे बच्चों को आदत डालिए। क्या सीखा ओवरऑल देख लीजिए। बेहतरीन अमल की आजमाइश का नाम है ज़िंदगी। जहन्नुम के दरोगा का सवाल, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या इसके लिए तैयार हैं लोग? नाफरमानी से खाइफ ही सवाब के मुस्तहिक हैं, यानी जो बिन देखे रब से डरेगा वही अजर पाएगा। और अल्लाह ताला अफ़ो मग़फ़रत का भी मालिक है और गिरफ्त पर भी कादिर है, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे पकड़ ले, और राज़िक़ के हकीकी सिर्फ रब्बे कदीर है। अल्लाह ताला ताल्लुक़ बिल्लाह की सूरत के बाद अब हमें ताल्लुक़ बिर रसूल की सूरत, सूरत अल कलम सिखा रहे हैं, जिसका दूसरा नाम सूरत नून भी है। कलम के लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। पहली चीज़ जो बनाई गई वो कलम। हदीस में कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया, फिर उसको कहा उकतुब लिख, और फिर उसने लोगों की तकदीरें लिख दी। तो इस कलम की इज्जत कीजिए। कलम का इस्तेमाल ना करने वाला तालिब इल्म कभी नहीं हो सकता। इल्म कलम के बगैर मिलता ही नहीं। 52 आयात हैं, 68 नंबर सूरत है, और इसमें अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में ही आलमोस्ट पूरी सूरत में बात होती है। देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून, व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून, व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, फसतुबसिरू व युबसिरून। जिनको तर्जमा आता है वो तो मुस्कुरा पड़े होंगे। प्यारे नबी के गुण गाए जा रहे हैं, मोती पिरो जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के। देखिएगा, नून कसम है कलम की और इसकी, जो के वो फरिश्ते लिखते हैं या इंसान लिखते हैं। तो अपने रब के फजल से दीवाना नहीं, यानी मक्का ले आपको दीवाना कहते थे, अल्लाह कहते आप दीवाने नहीं। हाँ, बस वो ये कहते थे क्रेजी हो गए हैं, हर वक्त इनको एक ही धुन है। लिख लीजिए ये जुमला, आज आपको भी सुनना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम डिवोशन के साथ इल्म लेने वाले और देने वाले और फिर उसको आगे दूसरों तक लाकर कायम करने वाले बनेंगे, तो लोग तो आप कहेंगे यू बिकम क्रेजी, आप एक्सट्रीम पे जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सुन रही हैं, आप बहुत ही सुना रही हैं। तो अल्लाह के नबी को भी लोग कुछ ऐसी ही बातें कहते थे। फरमाया, बेशक तेरे लिए बे इंतहा अजर है। दुआ करें अल्लाह हमें ऐसी नेकियां करके जाने वाला बनाए कि हमारे लिए भी अजरन गैर ममनून हो। इसके साथ मेरे माइंड में एक तस्वीर आती है। एक आईने के आगे आप एक दूसरा आईना रख दीजिए, तब देखेंगे कि एक आईनों की लंबी कतार आपको दिखेगी, ये है अजरन गैर ममनून। दुआ कीजिए अल्लाह ऐसा काम कोई ले ले, नस्ल दर नस्ल बाद में मेरे आपके लिए वो सदका जारिया बन जाए और लोग नस्लों दर नस्ल उसी चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, जैसे आज इमाम बुखारी की किताब से लोग फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा ना ख़त्म होने वाला सदका जारिया का काम ले ले। और बेशक आप तो बड़े उम्दा अखलाक पर हैं, ये है काना खुलुका हुल कुरआन। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीका की ये गवाही है, कहती हैं कि अल्लाह के नबी का कुरान क्या था? फ़इन्ना खुलिक़ नबी कानल कुरआन, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान था। अल्लाह हमारा भी ऐसा बना दे। अब ये जो जुटलाने वाले थे उनके साथ क्या होगा? बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू जुटलाने वालों की बात न मान, वो तो चाहते हैं कि तू ज़रा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं। हाईलाइट कीजिए, केयरफुल हो जाएं। आपके भी इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी ख्वाहिश के वद्दू लौ तुदख़िनु फयुदख़िनुन, दुखन कहते हैं चिकनाई को, ऑयल को, स्लिपरी। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द भी ऐसे होंगे, दोस्तों में, साथियों में और इर्द गिर्द के रिश्तेदारों में, जो आपको ढीला करना चाहते हैं। चलो बस इतना तो कर लो ना, अच्छा चलो ये नहीं रंग बदल लो, अच्छा ज़रा स्काफ ये ना ज़रा ढीला कर लो, अच्छा ज़रा इसके ऊपर मोती लगा लो, अच्छा ज़रा इसको फैंसी कर लो। आप एकदम कीजिए आपका निकाब स्काफ में और स्काफ दुपट्टे में, और दुपट्टा फिर किसी भी पट्टे में बदल कर ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा दीन पर जब अमल करने लग जाएं तो किसी की भी खुशी के लिए या किसी के डरावे के लिए मत पीछे हटिए। بی آسیہ سے مثال پیچھے لے چکے ہیں. شوہروں کی خوشی کے لیے پردے، حجاب، نماز، نقاب سب چھوڑیں گے. نہیں بس ایک فلم دیکھ لو، بس ایک دفعہ کی بات ہے، میری خوشی نہیں کرنا. ڈھیلے نہیں پڑنا، زبان نرم، کام گرم. اصول سخت ہیں لیکن بات بحث میں نہ پڑے. بس فرمایا تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقار ہو. تو کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کو ہدایت والے بھی دکھتے ہیں اور ہدایت سے دور بھی ہیں. اس رستے میں بہت سارے لوگ دن رات آپ کو مجھے اٹریکٹ کروائیں گے اپنی طرف. کوئی اپنے کپڑے بیچنے کے لیے، کوئی جوتے بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کرے گا، اور کوئی کچھ حسن بیچنے کے لیے. آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مقصد حیات سے واقف انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، رسولوں اور کتابوں کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو غافل بندہ ہے وہ اللہ کے حکم اور حدود کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے اور رسولوں اور کتابوں کو نہیں مانتا. روایت نوٹ کیجئے گا، صحیحہ کی روایت ہے 2342، ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے ایک لکڑی اپنے سامنے اور ایک دوسرے پہلو کے ساتھ گاڑی، پھر ذرا دور کر کے تیسری لکڑی گاڑ دی. یہ دیکھیے ٹیچنگ سٹائل اللہ کے نبی کا، انالیجز دے کر، کچھ گرافز بنا کر، کچھ ظاہری چیزوں کو ادھر ادھر کر کے سکھاتے، تو یہ بڑا پیارا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ قسم کا کیٹلسٹ ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ جڑ جاتی ہے. جب یہ سارا کر چکے تو آپ نے پوچھا، تم جانتے ہو یہ کیا؟ صاحب نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ انسان ہے، یعنی پہلی لکڑی کا یہ انسان ہے، پھر دوسری دکھائی کا یہ اس کی موت ہے، اور جو تیسری دور تھی کا یہ اس کی تمنائیں ہیں جو اپنی آرزوؤں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے ہی موت اس کو چک لیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ دم نکلیں، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات کے پیچھے جینے والے اسی طرح ساری زندگی لڑکتے رہتے ہیں. اور کچھ نیگیٹو چیزیں، جو ایک کردار تھا نام لیے بغیر اس کا قرآن نے رکھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر باتیں چھانٹنے والوں میں سے ایک شخص، جس میں کیا برائیاں تھیں. فرمایا پیچھے کہا، فلا تطیق اللاف مہین ہم مازم مشائم بن نمیم من نائل الخیر معتد اسیم. کم خو، کمینہ لفظ اچھا نہیں لگتا اس لیے اوائڈ کرتی ہیں اس کو، یعنی کم ظرف، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نصب ہو. اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے تھے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. دیکھیں ناک کو سونڈ کہا جا رہا ہے، کہ ناک ہی کا تو مسئلہ تھا نا. آج بھی لوگ عزت بچانے کو ناک بچانا کہتے ہیں، تو اصل میں یہ کردار ہے. نام اللہ نے نہیں لیا تو میں بھی نہیں لیتی، لیکن یہ موجود ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے شخص نے آ کر یہ سارے باڈی ایکشنز دکھا کر آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی کہ جس نے دوسروں کو بھی اللہ کے نبی کے پاس آنے سے روک لیا. تو باڈی لینگویج میں کیا کیا چیزیں، غافل بندہ کیسا ہوتا ہے، قسمیں بہت کھاتا ہے، تانے بہت دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، خیر سے روکتا ہے، سر عام گناہ کرتا ہے، حرام کو معمولی جانتا ہے، مغرور بھی ہوتا ہے، تند خو بھی ہوتا ہے، بدنام بھی ہوتا ہے، اور حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے. چیک کیجئے اس میں اگر کوئی ایک عادت پیچھے رہ گئی ہے باپ میں ابھی تک، ساری چیزوں کو نکالنے کے باوجود نیت کیجئے میں نے اپنے اندر سے یہ نیگیٹو چیزیں نکالنی ہیں، یہ بد اخلاقی کی باتیں ہیں. اب آگے ایک واقعہ ہے جس کو باغ والا واقعہ کہتے ہیں، کہ کیسے باپ نیک تھا لیکن اولاد نے اس کے بعد کیا کیا، اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں نا وہ بتائے جا رہے ہیں. مکہ والے جو اللہ کے نبی کے اوپر یہ باتیں چھیڑتے تھے نا، اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ کھاتے پیتے تھے، سردار تھے، بڈیرے تھے، بہت چودھری ٹائپ کے تھے، بڑے شیخ تھے اور دولت مند تھے. اس کے برعکس اللہ کے نبی ایک غریب مکہ، ایک کہہ لیجئے کہ یتیم شخص. اللہ کے نبی تو وہ ایک ایسا پھول تھے جو صحرا میں کھلا، در یتیم تھے. تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی میں کیا خوبی اللہ نے دیکھی ہے کہ ان کو چن لیا. ہم تو اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس تو ڈگریاں بھی، ہمارے پاس تو نسبتیں بھی بڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں اس کا ایک باغ کے واقعے سے، کہ اللہ جس کو جو دینا چاہتا ہے اللہ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ کون کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اور کون کس کو نہیں. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا، کن کو، مکہ والوں کو، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا. بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو. बाप लोगों के बीच में जाके काटता था, गरीबों को देता था। इन्होंने कहा कैसा ना समझ बाप था, इतनी मेहनत से फल उगता और आधा गरीब ले जाए। हम फजर से पहले ही रातों रात जाएंगे, फल तोड़ लाएंगे, गरीबों के आने से पहले हम समेट चुके होंगे। उनके इरादे क्या थे, अल्लाह ने क्या किया। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आए। और लपके हुए सुबह सुबह के समझ रहे थे कि हम काबू पा गए, यानी कितने ना समझते कि अच्छा इस दफा सारे ही फल हम खुद ही रख लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे यकीनन हम रास्ता भूल गए, यानी बाग तो वहां था ही नहीं। नहीं नहीं बल्कि हमारी किस्मत फूट गई, इनमें जो सबसे बेहतर था। इसने कहा मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकी इसकी क्यों बयान नहीं करते। तो सब कहने लगे हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। अब पता चला कि लगा हुआ बाग जाया हो गया। बस लोगों की नेकियां इसी तरह जाया हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें हफ्ते अमल से बचाए। फिर एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे, कहने लगे हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। क्या अजीब कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे। हम तो अब अपने रब से ही आरजू करते हैं, यूं ही अजाब आता है और आखरत की आफत बहुत बड़ी है। काश इनको समझ होती। तो दुनियादारी में गर्क लोग एक बाग वाले के रूप में यहाँ दिखे। नेमतों को विरासत समझते हैं कि बाप का माल है, सदका खैरात में बखीली करते हैं, नीयत की खराबी का शिकार होते हैं, माल की मोहब्बत में चूर, और अल्लाह का हिस्सा भी नहीं दिया यानी ज़कात उशर, और इसी तरह गरीबों के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना। नतीजा क्या निकला, बाग का फल ज़ाया हो गया, मेहनत बर्बाद हो गई। अमल का नुक्ता, गलती का इतराफ़ कर लेना चाहिए, फौरी तौबा करें और रुजू करें, दुआ और इस्लाह करें। अल्लाह ने अभी आपको मुझे भी इसका मौका दिया हुआ है। अब आगे इसी के बाद जन्नत के असल बाग की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि ये सब करने वाले सुन लें। इन्नल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नाति नईम अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। परहेजकारों के लिए इनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं, क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे। तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो, केस में तुम्हारी बातें हों। रुकिए और थीम के साथ जोड़िए इस आयत को। एक स्टूडेंट पांचों सवालों के जवाब पूरे सही लिखे और दूसरा जाके फिल्म की स्टोरी लिखा है, क्या दोनों को फर्स्ट इकरार दिया जाएगा। दुनिया में तो कोई कम से कम अकल वाला ना करे, नाउज़ुबिल्ला कुछ लोग अल्लाह ताला से ऐसी ही बेइंसाफी की उम्मीद लगाए हुए हैं। एक बंदा भाग रहा है, दौड़ रहा है, अल्लाह को राजी कर रहा है, पहले रब की बंदगी में ढलता है, फिर शहादत अल नास की गवाहियां देता है, फिर इकामत दीन अपनी जिंदगी के और अपने चारों पांचों फैक्टर्स पे करता है कि अल्लाह उसको सोने खाने पीने मौज मस्ती और गुनाहों में भागने जैसा कर दे। तो याद रखिए क़यामत के दिन के रिजल्ट आपकी मेरी मर्जी के नहीं होंगे। जिंदगी और मौत की तख्लीक का मकसद क्या है कि हम इस दुनिया में आने का मकसद समझें। आजमाइश है, कुछ लोग कामयाब हो जाएंगे, वो मुस्लिमीन करार दिए जा रहे हैं इस आयत में और नेमतों भरी जन्नत में होंगे। इसके बरक्स जो नाकाम होंगे वो मुजरमीन हैं इस आयत की रोशनी में, सूरत कलम आयत 35 है ये। और इनको दुनिया का अजाब क्या मिलेगा, वक्ती और छोटा जिंदगी में ही अजाब मिलेगा, तौबा करेंगे तो टल जाएगा। इसके बरक्स आखरत तक अगर पहुंच गया यानी तौबा न की तो दायमी और बड़ा आखरत में अजाब मिलेगा, और वहाँ जाकर अगर तौबा करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट जो पर्चा दे कर आने के बाद पेपर हल करने की कोशिशें करे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज ज़िंदगी में मोहलत अमल से फ़ायदा उठाना है। या तुम में से हमने कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहेंगी, कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ है कि जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो। इनसे पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार है और दावेदार है, या इनके कोई शरीक हैं तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आए अगर ये सच्चे हैं। कुरान का ये चैलेंजिंग स्टाइल भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, किस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं। और देखिए ये दावा सिर्फ वो कर सकता है, सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास कुछ हाथ में होता है। अमल के कोरे लोग कभी भी बड़े बड़े दावे भी नहीं कर पाते। ज़रूरत है इस बात की कि हम सब अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को लें और समझें और इसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि क्या हम इस दुनिया के मेले में, इस दुनिया के इस बाजार में वाकई खैर की चीज़ें जमा करें। क्या मैंने अपनी आखिरत को दांव पे तो नहीं लगाया हुआ, क्या हम वाकई ज़िम्मेदार हैं अपनी गफलतों के और अपनी कोताहियों के। जितना ज़्यादा इस पे गौर करते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए इन बातों को सुनना समझना सब कुछ बेहतर से बेहतरीन करता जाएगा। जितना ज़्यादा आपका मेरा अपने ऊपर अमल, अपनी कोशिशों पे हमारी नज़रें होंगी, अपने आप को बेहतरीन तरीके से रखेंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप देखिए पढ़ना क्या होता है, अपने अंदर को झंझोड़ना, शौर को बेदार करना। अपने आप को जितना ज़्यादा इस चीज़ के साथ जुड़ेंगे, आप देखिएगा गैर महसूस तरीके से दिल खिल जाएंगे, दिल खुल जाएंगे, तो किसी शरीक की तो ज़रूरत ही नहीं। अब आगे देखिए एक ऐसा वक्त जो सब पे आने वाला है। अल्लाहु अकबर। यौम युक्शफु अन साक़िम युदउन इलस सुजूद फला यस्ततीउन। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे, निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सलामत थे। बस मुझे और इस कलाम को जुटलाने वाले को छोड़ दे, हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इनको मालूम भी ना होगा। सवाल कीजिए मेरे सजदों की क्या कैफियत है, क्या नमाजें डिली डैली का शिकार तो नहीं, क्या इन नमाजों को टाल टाल के तो नहीं पढ़ती, क्या मैं इन नमाजों को पकड़ कर ज़ाया तो नहीं करती। क़यामत के दिन आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़ाया की हुई नमाजों को कंपनसेट करना चाहेंगे और कहते हैं कि ये उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएंगे, तो लोग उस वक़्त चाहेंगे कि अल्लाह ताला के आगे झुके लेकिन नहीं झुकेंगे। तो आज ये वक्त है मेहनत का, इरादों का, कोशिशों का। जो फालतू वक्त उसको सजदे में सर रख के गुजार दें, यकीन करें आप महसूस करेंगे कि आपके ये सजदे क़यामत के दिन की उस घबराहट को दूर कर देंगे। फरमाया मैं इन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तू इनसे कोई उजरत चाहता है जिसके तावान से ये दबे जाते हों, या क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे वो लिखते हों। बस तो अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतज़ार कर और मछली वाले की तरह न हो जा जबकि इसने गम की हालत में दुआ की। देखिए हज़रत यूनुस का तीसरा नाम इधर आ गया, साहिबुल हूत, पीछे ज़न्नून भी पड़ा। यहाँ पे आप देखिए कि साहिबुल हूत है ना, मछली वाला, इतने प्यारे नाम क्यों हैं, ज़न्नून भी और इसी तरह आपका अपना नाम भी लिया गया। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत, और ये दिख रहा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की उस कोताही से दरगुजर कर दिया। क्या किया था उन्होंने, मछली वाले की तरह ना हो जा जबकि इसने गम की हालत में दुआ की। अगर इसे इसके रब की नेमत ना पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिए जाते। उसे उसके रब ने फिर नवाजा और उसे नेक लोगों में किया। करीब है कि काफिर अपनी तेज नजरों से आपको फिसला दें जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो ज़रूर दीवाना है। दर हकीकत ये कुरान क्या है, वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। अल्लाह के नबी को फिसलाने के लिए नजरें लगाते थे, घूर घूर के देखते थे। ऐसे बाज लोग आंखें खोल के देखते हैं कि देखने वाले को घबराहट होने लगे। तो याद रखिए ये नज़र लगना और नज़र लगाना ये भी एक हरबा होता है कुछ लोगों का कि चलो इसी तरह से फिर इनको डी ट्रैक करें। तो कभी भी कहीं इल्म की महफिल में बैठे हों तो कभी उस्ताद के सामने नज़रें ना उठाइए। सहाबा किराम साइड्स पे बैठते थे, ऐसे झुक के बैठते थे कि अल्लाह के नबी को देखना बते, साइड से देखते थे। जब अल्लाह के नबी उनको देखते तो निगाहें झुका लेते खुद भी, और जब अल्लाह के नबी उनको ना देखते तो ये चुपके चुपके देखते थे। ये इल्म का अदब बताया जा रहा है आपको। तो क्या सीखा हमने सूरत कलम में कि ज़्यादा कस्में खाने वाले ज़्यादा झूठ बोलते हैं, गुनाहगार और नेकुकार दोनों की जज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये लाजमी बात है। और हिसाब के दिन सजदा मुनाफिकों के बस में नहीं होगा, और कुरान तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। अल्लाह ताला हमें इससे नसीहत लेने वाला बनाए। तो ताल्लुक बिर रसूल कुछ महसूस हुआ आपको इस सूरत को पढ़ के? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसके बाद है सूरत अल हक़। आप देखिए कि सूरत कलम, जिसको नून भी कहा, नबी के अखलाक को देखा, उनकी बातों को देखा, अब यहाँ ईमान बिल आखिरा को मजबूत करते हैं सूरत अल हक़ की रोशनी में। 69 नंबर की सूरत है, 52 आयात है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحاقة الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية। साबित होने वाली क्या है और तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा है, यानी हकीकी बात है, ये हो करेगा, ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही कोई मिथ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको तुम अपनी ज़िंदगी में अहमियत ही ना दो, ये होगी डेफिनेट। इस खड़का देने वाली को समूद और आत ने झुटला दिया था, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए, यानी क़यामत भी एक बहुत तेज़ धमाके वाली आवाज़ होगी, उसी का जिक्र है। और आज बेहद तुंदो तेज़ हवा से गारित कर दिए गए, क्योंकि इन कौमों की क़यामत तो उसी वक्त कायम हो गई ना जब इनके ऊपर अजाब के असरात शुरू हुए, जिसे इन पर 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह ने मुसल्लत रखा। बस तुम देखते कि ये लोग ज़मीन पर इसी तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों। क्या इनमें से भी कोई आपको बाकी नज़र आता है? आपको दिखा कभी कोई कौमे आद और समुद का शख्स? नहीं दिखा। फिरौन और इसके पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गई थी, उन्होंने भी खताएं की। तो डराया जा रहा है हाल के झुटलाने वालों को कि जैसे पिछलों का नाम निशान नहीं दिखता, एक वक्त आएगा तुम्हारा भी नाम निशान नहीं दिखेगा। तो सोचो इस चीज को क्या कि तुमने अल्लाह ताला के साथ फिर मामला कैसा करना है, और अल्लाह के नबी के दिए हुए इस दीन के साथ कैसा मामला करना है। और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की बिलाहर अल्लाह ताला ने भी इनको ज़बरदस्त गिरफ्त में ले लिया। जब पानी में तुगयानी आई तो इस वक्त हमने तुम्हें कश्ती पर चढ़ा लिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें। अल्लाह ताला कश्ती का जिक्र कई जगह कर चुके, सूरत हूद में तो पूरा वाक़या हमने पढ़ लिया कश्ती के बनाने और बेटे के डूबने का। तो क्या पता चला कि अल्लाह के सहारे टूटी हुई कश्तियाँ भी तर जाती हैं, और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को सहारा बनाने वाले डूब जाते हैं। और उस कश्ती को निशानी बनाया, कहते हैं कि ये डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन इस आयत को देखे तो क्यामत से पहले ये सामने आएगी। बस जबकि सूर में एक फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, इस दिन हो पड़ने वाली क्यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा। ज़रा सा इसको इमेजिनेट करेंगे ना तो फिर चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम जब तक अपने जहन में उसकी पिक्चर ना बना लें वो बात समझ नहीं आती। तो ख़ुद को वहाँ खड़ा कीजिए जहाँ की ये बातें हो रही हैं, और फिर इसके मुताबिक गौर फिक्र कीजिए। और आसमान फट जाएगा और इस दिन बिल्कुल बोदा हो जाएगा, यानी सुस्त पड़ जाएगा। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। याद रखिए क़यामत के दिन 8 फरिश्ते होंगे, और अहादीस से पता चलता है कि इस वक्त 4 फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को पकड़ा हुआ है। यहाँ से आप फरिश्तों की हैयत और उनकी ऊंचाई और लंबाई को देखिए। इस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा न रहेगा। क़यामत वाक़े होने के मराहिल आपके मेरे सामने हैं। ज़मीन और पहाड़ यकलख्त पाश पाश हो जाएंगे। सोचिए ज़रा, अल्लाह ना करे बैठे बैठे ये मंज़र सामने आ जाए, ज़मीन हिलने लगे तो क्या होगा, और क्या होगा उसके बाद? फरिश्ते आसमान के किनारों पर पनाह लेंगे, क्योंकि आसमान जो ऊपर से गिरने टूटने लगा तो सब किनारों पे आ जाएंगे। फिर इसी तरह आने वाहत में आसमान फट जाएगा। 8 फरिश्ते अर्शे इलाही को उठाए हुए होंगे, और ये इंसानों की पेशी का दिन होगा। तो जिसका नाम अमाल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा, लो मेरा नाम अमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपने हिसाब से मिलना है। बस वो एक दिल पसंद जिंदगी में होगा, बुलंदोबाला जन्नत में जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। इनसे कहा जाएगा कि मज़े से खाओ पियो अपने इन अमाल के बदले जो तुमने गुज़श्ता ज़माने में किए, लेकिन जिसे के उसके अमाल की किताब बाएं हाथ में दी जाएगी वो तो कहेगा, काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। या लैतनी, काय अफसोस, या लैतहा कानत अल-क़ादिया, काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती, काश मेरा हिसाब ना होता, मागनानी मालिया, काश के मौत मेरा काम तमाम करती, मेरे माल ने भी मुझे कुछ नफा ना दिया। कैसे हसरतें और अफसोस हैं। आप देखिए कि कमरा इम्तिहान में बैठे लोग हैं, नतायज क्यामत के दिन दिखेंगे, डिक्लेरेशन होगी, रिजल्ट्स निकलेंगे। उसको ज़रा से देखिए कि कामयाब तालिब इल्म का कैसा वो दिन होगा। पहली बात है कि तैयारी की थी, ईमान अमल साले और बदले की उम्मीद के साथ नेकियां की थी। एक जुमला बोला है ना इस शख्स ने, जब लोग पूछते हैं कि बताओ भाई तुम्हारा ये इतना अच्छा मामला कैसे हो गया, बिल्कुल जहन में इन आयतों को देखकर आता है। एक बच्चा, उसका रिपोर्ट कार्ड आया और वो फर्स्ट आ गया। आप देखिए कि बच्चे जब फर्स्ट आते हैं तो रिपोर्ट कार्ड बाहर से हाथ में पकड़े हुए लाते हैं, और हाँ मुख रहो किताबी मामा मामा देखे, फ्लॉन्ट करते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं। और चूंकि पास अब लोग पूछते हैं कि अच्छा भी इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, सिर्फ एक जुमला है आयत 20 हाईलाइट कर लें, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बस ये काम कर लें, बाकी काम अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए दाएं हाथ में नाम अमाल मिलना, इस बात का गुमान है कि इसको जन्नत में जगह मिलेगी। खुशी में सबको रिजल्ट दिखा रहा है, जन्नत के बाला खानों में अबदी जिंदगी होगी। इसके बरक्स वो शख्स जिसको हसरतें हैं, हलकानी सुल्तानिया खुजूहू फगुल्लू, सुम्मल जही मसल्लू, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा, हुक्म होगा किसको पकड़ लो, फिर इसे तौक पहना दो, फिर इसे दोजख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीरों में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पर ईमान न रखता था और ये मस्कीन के खिलाने पर रग़बत नहीं दिलाता था। यानी इसके जुर्मों की लिस्ट बड़ी लंबी है, और आज इसके साथ हो क्या रहा है इसको जरा सा हाईलाइट कीजिएगा। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, बस आज इसका ना तो कोई दोस्त है, सब दोस्तियां दुनिया में खत्म, और ना सिवाय पीप के इसकी कोई गजा है जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। ये है नतायज के ऐलान के बाद नाकाम तालिब इल्म का हाल। चार ही चीजें थी ना, तैयारी करनी थी, कुछ नतीजे दिखने हैं, फिर कुछ रद्द अमल शो होगा और कुछ बदले मिलेंगे। पिछले शख्स की बनिस्बत देखिए कि इसकी तैयारी नहीं थी, दुनियादारी थी, माल और दौलत की हवस थी, कह लीजिए पढ़ने की बजाय ये सिर्फ सोशलाइजिंग ही करता रह गया। फिर इसको बाएं हाथ में नामे माल मिलेगा, रिजल्ट मिलने का अफसोस होगा, मौत की ख्वाहिश होगी और जंजीरें तौक राख का अजाब होगा। क्या मिला क्या लिया, इस इंसान ने पाया क्या वहां जाकर? माँ ने इसको भी पेट में रखा, पाला, दर्दों से सहा, सब किया, लेकिन आज इसको बोर्डिंग पास जन्नत का नहीं जहन्नम का मिल गया। तो अमलनामा क्या है? बोर्डिंग पास। किसी को जन्नत के फ्लाइट का मिलेगा तो किसी को जहन्नम का, और वहां हसरत होगी, हाय हलाकतनी सुल्तानिया, मेरा घर मेरे काम नहीं आया, मेरी जिकोजी मेरे काम नहीं आई, मेरी पेंट्री, मेरा लॉन, मेरा गार्डन, मैं तो घर में किसी को कदम ना रखने दूं, मेरे सोफे काम ना आए, मेरे कर्टन काम ना आए, जिनको खपाते करते करते जिंदगी जाया कर दी और मुझे वक्त ना मिला इस किताब को सीखने का। कैसे खामोशी से इसमें से हम गुजर जाएं? तो याद रखिए, अकीदे आखिरत पर ईमान और शऊर से जिंदगी गुजारने की जरूरत है। दुनिया को दारुल अमल समझने वाले मकसद हयात से आगाह लोग होते हैं। आप भी अपने लिए चेक पॉइंट्स बनाइए, हिसाब की अहमियत से वाकिफ होते हैं, नामे अमाल उनको मिलता है दाएं हाथ में, खुश भी होंगे, नतीजे बड़े प्यारे हैं। इसके बरक्स जो इसको दारुल अमल नहीं समझते, उनके फितने तो आप सब देख ही रहे हैं। मकसद हयात से गफलत ने हिसाब की अहमियत से नावाकिफ कर दिया, समझ ही नहीं पाए। देखिए दुनिया में हिसाब का पर्चा बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, आज भी मैं और आप हिसाब के पर्चे दे रहे हैं और ऐसे मज़े में झूमते झामते कि कोई केयर ही नहीं। कैलोरी तो एक एक गिन कर खाएं पिए, नोट गिन गिन कर निकालें और गुना बेहिसाब करें, नेकियां गिन के करें, गुना बेहिसाब करें, तो फिर जब बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेंगे तो गमगीन तो होंगे और कहेंगे या लैता कानत अलकाज़िया, मौत ही आ जाती। लेकिन अल्लाह कहते हैं यहाँ तो मौत भी नहीं है, मौत को भी मौत आ जाएगी, और जहन्नम के तौक और गसलीन खाने वाले वहां हसरतों का शिकार होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे। सही मुस्लिम की रिवायत है 6989, जिंदगी में तौबा कर लीजिए। अबू मूसा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह इज्जत और बुजुर्गी वाला अपना हाथ फैलाता है रात को ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, यहाँ तक कि आफ्ताब निकले पश्चिम से, यानी सूरज मशरक़ की बजाय मग़रिब से निकले। ये अलामतें कुबरा हैं क्यामत की, क्यामत की अलामतों में से, जिसको के मेजर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह ताला उससे पहले ही तौबा की तौफीक अता फरमाए। बस मुझे कसम इन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते, क्या है कसम का जवाब देखिए कितना खूबसूरत है। फरमाया, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिकौलि शायरिन कलीलम मा तुमिनून। इन आयतों के बारे में हजरत उमर का बड़ा दिलचस्प वाक्या, पढ़ लीजिएगा बाद में किसी बुक में, कि अल्लाह ने उनके दिल में ईमान इन आयतों से डाल दिया था। ये अलग बात है कि जुबान पे फिर सूरत तौहा की आयतों को सुनकर अपनी बहन की जुबान से आ गया था। तो देखिए, बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं, अफसोस तुम्हें बहुत कम यकीन है, और न किसी काहिन का कौल है, अफसोस के बहुत कम नसीहत ले रहे हो, ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, और अगर ये हम पर कोई बात बना लेता तो अलबत्ता इसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर इसकी शहरग काट देते, फिर तुम में से कोई भी इससे रोकने वाला ना होता। यकीनन ये कुरान परहेजकारों के लिए नसीहत है, हमें पूरी तरह मालूम है, और तुम में से बाज इसके झुटलाने वाले हैं, बेशक ये झुटलाना काफिरों पर हसरत है, और बेशक को शुबा ये यकीनी हक है। पस करिए कि आप सब बेख बेस में रब कल अजीम, पस तो अपने रब अजीम की पाकी बयान कर। आप भी कह लीजिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो क्या सीखा सूरत अल हक़ा से? ईमान बिल आखिरा, दुआ कीजिए ये ईमान पुख्ता हो जाए और इल्म आखरत फिक्र आखरत में ढल जाए। यकीन रखो कि क़यामत कायम होकर रहेगी। क़यामत की हौलनाक खियों में भयानक आवाज़ सूर का फूका जाना देखा। दाएं हाथ में नामे अमाल पकड़े हुए खुश नसीब लोग भी नजर आए और बाएं हाथ वालों की हसरत, काश मेरी किताब ही मुझे न दी जाती। और कुरान पाक ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा। अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा लेने वाला बना दे। इसके बाद है सूरत मारिज दावा पैकेज में। अब आप इतनी बातें पहले लोगों को बता दें, कोई भी शख्स इस्लाम से दूर है, ईमान से दूर है या कुरान से दूर है, तो पहले अल्लाह से जोड़िए, फिर रसूल से जोड़िए, फिर उसको आखरत की कुछ बातें बताइए। और आप यहाँ देखिएगा लीस्ट पैकेज टू बी अ मुस्लिम, 70 नंबर की सूरत है, 44 आयते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़े लिलकाफिरीन लैस लहू दाफ़े मिनल्लाहि ज़िल मअ'रिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब का सवाल किया जो वाज़ह होने वाला है। आके अल्लाह के नबी से सवाल जवाब करते थे, उसी की तरफ इशारा। काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं, इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है। मारिज लफ्ज़ इसी से लफ्ज़ मेराज है, बुलंदी, जिसकी तरफ फरिश्ते रुख चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मकदार 50,000 साल की है। क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। बस तू अच्छी तरह सब्र कर, तो क्या पता चला मांगने वाले ने अजाब मांगा। मजाक करते थे अल्लाह के नबी से, उसी की तरफ इशारा है। और इसी से एक और मुराद भी है कि सरकश कुफार की वो दुआ जो उन्होंने अल्लाह से अजाब के लिए की थी और फिर अल्लाह ने उनको अजाब में पकड़ा था, पीछे सूरह दुहान में इसका जिक्र हुआ। बेशक ये इस अजाब को दूर समझ रहे हैं और हम इसे करीब देखते हैं। जिस दिन आसमान मिसल तेल के तलछट हो जाएगा और पहाड़ मिसल रंगीन ऊन के हो जाएंगे। और इसको भी हाईलाइट कीजिए, ये मजमून अब बार बार आएगा, वहां कोई काम नहीं आ रहा। भला यसलु हमीमन हमीमा, और कोई दोस्त किसी दोस्त को पूछेगा भी नहीं। यो बसरु नहुम या वद्दुल मुजरिमुलव यफ्तदी मिन असाबी यौमी इज़िम भी बनी। हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे गुनाहकार इस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को और अपने भाई को और अपने कुंबे को जो इसे बना देता था, और वह जमीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये इसे निजात दिला दे, मगर यह हरगिज नहीं होगा। यकीनन वो शोले वाली आँख है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है। अल्लाह हू अकबर कबीरा। नज़ात लिशवा, अभी जहन्नमी दूर ही होगा ना, तो उसकी चेहरे की खाल पिघल कर पाँव में आ जाएगी। ऐसे प्याले दिए जाएंगे गर्म मशरूब के कि खाल सारी पिघल के गिर जा रही होगी। तदु मन अदबरा वतवल्ला वजमा फाउआ, बाहर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है और जमा कर करके संभाल रखता है। बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया। इसको हाईलाइट कीजिए। हलुआ एंग्जाइटी, यानी एंग्जाइटी की दो किस्में। हलू क्या होता है कि जो तमन्ना करें फौरन मिल जाए, अभी फौरन, जल्दी करें, जल्दी बुलाएं, पिज्जा मंगाएं, पार्लर जाना है, जल्दी करें, गाड़ी किधर है, ये है हलू आज का। और इसी तरह हलू कहते हैं जो मेरे पास है वो किसी और के पास ना हो। आज इंसानों की जिंदगियां, खास तौर पे मुसलमानों की जिंदगियां इसी हलू की मुंह बोलती तस्वीर हैं। अब इसको सुनकर फिर सुनिए ताकि तोहा कर लें कि अल्लाह हमारे दिल से ये हलू निकाल दें। इसी से सारा स्ट्रेस और इसी से सारी एंग्जाइटी है। फरमाया जमा कर कर के संभाल के रखता है। बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया। जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है, यानी गम में, डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है और खुशियों में एंग्जाइटी का शिकार। दुल्हन तैयार नहीं, बहने तैयार नहीं, किधर जाऊँ, मेरे कपड़े, मेरे बुंदे किधर, क्या आज मुसलमान किसी किस्म के काम नहीं करता। तो लिखिएगा दुनिया की हकीकत को ना समझने के फितने में मुब्तला लोगों का यही हाल होता है। दुनिया में रिश्तेदारों और दोस्तों में मगन रहे, हक से मुंह मोड़ते रहे, माल को जमा करके बुखल करते रहे, आखिरत में क्या होगा इन्हीं रिश्ते और दोस्तों को फिदिये में देना चाहेंगे। आपने इस आयत पे गौर किया, इतना सखी बन रहा इंसान कि अल्लाह मुझे अजाब से छोड़ दे। और देखे सबसे पहले जो चीज़ पेश करता है ना वो बनी है। हालांकि अगर आप तरतीब में देखें तो पहले माँ बाप, भाई बहन, फिर बीवी, फिर बच्चे होते हैं ना। घर तो कहीं बाद में जाके बनते हैं, लेकिन यहाँ बेटे पेश किए। उलमाए कराम कहते हैं कि बेटे को पेश इसलिए करेगा कि बेटा सबसे कीमती चीज़ होती है, सबसे कीमती चीज देता है, जैसे चोर को देकर बंदा चूड़ियां उतार के, चूड़ियां ले जाओ मेरे बच्चे को कुछ ना कहना। तसव्वुर में लाइए, माँ अपने हाथ से अपने बच्चे को आग में डाल रही है, और ये कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, इट्स रियलिटी, हकीकत है। जन्नत भी खुली हुई है और जहन्नम भी खुली हुई है। आज दुनिया में जिन औलादों के पीछे खप जाते हैं, कल उनको पेश करेंगे, लो अल्लाह इनको आग में डाल दो, फिदिये में। हक से मुंह मोड़ने वाले आग से जान नहीं छुड़ा सकेंगे, और जो माल जमा किया वो सांप बनकर बायस अजाब होगा। तो दुनिया की हकीकत समझिए, अब तो पारे भी खत्म हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत 6415, जन्नत में कोड़े जितनी जगह दुनिया और जो कुछ इसमें उससे बेहतर है। और अल्लाह के रास्ते में सुबह को या शाम को थोड़ा सा चलना भी दुनिया और की सारी चीज़ों से बेहतर है। तड़प लग जाए, आगे वो पैकेज है जिसको आप कह सकते हैं कि मुसलमान होने का कम से कम दर्जा क्या है। फरमाया, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, मगर वो नमाजी जो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं, और जिनके मालों में मुकर्रर हिस्सा है, मांगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी, और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं, और जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हराम से हिफाजत करते हैं, हाँ इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। अब जो कोई इसके अलावा राह ढूंढेगा तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे जो अपनी अमानतों का और अपने कौलो इकरार का पास रखते हैं, यानी अपनी कमिटमेंट्स को निभाते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। तो कम अज़ कम इतना तो इंसान करे, ये तो करने का काम है। दुनिया की जब हकीकत समझ आ जाती है ना, तो बंदे में ये सब खूबियाँ आती हैं जो आपने इस आयत में देख ली। नमाज की पाबंदी है मेरे अंदर, खुद से पूछिए। अपने माल से साइल और महरूम को हक देती हूँ, रोज़े जज़ा को मानती हूँ, अल्लाह के अजाब से डरती हूँ, इज्जत की हिफाजत करती हूँ, अमानत और अहदो पैमान का पास रखती हूँ, गवाहियों में रास्तबाजी पर कायम रहती हूँ, नमाजों की हिफाजत करती हूँ, नमाज से बात शुरू होती है और नमाज पे ही बात पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला में अपनी नमाजों की फिक्र लगा दे, शुरू से आखिर तक खुशू की कैफियत में रहिए, ऐसी नमाज पढ़िए कि जिसको देख कर दूसरे को भी अपनी नमाज को दुरुस्त करने की तौफीक मिल जाए। आप देखिए कि नमाज तो पढ़ते ही है ना, लेकिन आपकी मेरी नमाज अगर अधूरी बधूरी होगी तो क्या मिलेगा। जिंदा नमाजें पढ़िए ताकि आपको मुझे फोहश और मुनकर से रोके। आज हमें सब याद आते हैं लेकिन अल्लाह याद नहीं आता, डॉलर का रेट याद आ जाता है, और इसी तरह से हम दुनिया के माल जोड़े कपड़े जेवर सेल साइन सब याद करते हैं लेकिन अल्लाह को याद नहीं करते। तो अल्लाह की याद आ जाती है ना, तो फिर इंसान फिर दूसरी तरफ नहीं रहते। फिर आप देखिए कि इसमें दोबारा फोहश की बात हुई, कैसे लोगों के किरदार में झोल नहीं होती। तो आप देखिए कि कोई पूरा घर साफ कर कर कचरे को ड्राइंग रूम में ला कर रख दे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह नमाजें पढ़ने के बावजूद भी फोहश और गलत चीज़ों से ना बचें तो क्या होगा, ये आपको मुझे अपने लिए देखना है। आपको मुझे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा देना है कि फुहश तो कम से कम निकले। देखिए नियत कीजिए, रमज़ान की चंद घड़ियाँ रह गई, बाकी जिसके ऊपर आपने मैंने गौर व फिक्र करना है और इस पे तदब्बर करना है कि आप सब जब जितना जल्दी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत होंगी, तस्किया होगा। और एक अंदर की बात बता दूँ, जब तक गाना बजाना नहीं निकलेगा कुरान नहीं आएगा, क्योंकि गिना जिना तक ले जाता है। तो अल्लाह ताला हमें कम अज़ कम अपनी आँखों कानों और इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया, पस काफिरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह, क्या इनमें से हर एक की ये तवक्को है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ऐसा हरगिज़ ना होगा। हमने इन्हें इस चीज़ से पैदा किया जिसे वो जानते हैं, बस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिबों के रब की कि हम यकीनन कादिर हैं इस पर कि इनके इवज इनसे अच्छे लोग ले आए, और हम आजिज़ नहीं। बस इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे, यहाँ तक कि ये अपने इस दिन से जा मिलें जिसका इनसे वादा किया जाता है। जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे गोया कि वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं, इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी, ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता था। क्या सीखा। अजाब के तालिब को अजाब दिए जाएंगे। उस दिन गुनाहगार अपनी हर चीज़ फ़दिये में देने को तैयार होंगे, लेकिन बेसुध होगा। इंसान बेसब्र और बखील और कंजूस है, और नमाजों की हिफाजत करने वालों को जन्नत में इज्जत और इकराम की खुशखबरियाँ दी जाएंगी, और रास्तबाजों के लिए अजर है वहाँ, और उस अजर से अल्लाह ताला उनको ज़रूर फैजयाब करेंगे। और इसी तरह नूरो हिदायत से भागा हुआ इंसान वहाँ अपने ही प्यारों को पेश कर रहा होगा कि अल्लाह इनको ले ले और मुझे आग से बचा ले। आज क़यामत वाली क़यामत दुनिया में, आज भी कोरोना ने लोगों को एक से दूसरे से दूर कर दिया, काट दिया। अल्लाह ताला इस छोटी सी आजमाइश से बहुत बड़ा सबक लेने वाला बना दे। अब आगे दावा पैकेज में सूरत नूह है, जिसमें आप देखिए कि हज़रत नूह को एक दाई दीन बनाकर पेश किया जा रहा है। वाकई उन्होंने दुनिया को कमरा इम्तिहान समझ लिया, और जो भी समझेगा वो इकामत दीन तक पहुँच ना भी पाए ना, तो वो शहादत अलन्नास का काम करेगा। 71 नंबर की सूरत है, 28 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अनज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दीजिए और ख़बरदार कर दीजिए इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इसी से डरो और मेरा कहना मानो, तो वो खुद तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह ताला का वादा जब आ जाता है तो मौखिर नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे। कुछ लोगों पे एक्शन होता है, कुछ पे रिएक्शन होता है। कुछ दवा खा के सेहतयाब होते हैं तो कुछ बीमार हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग कुरान की दावत पे खुश होते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, दावत दी, बताया, और कुछ लोग गुस्सा करते हैं कि क्या मुसीबत है आपको और कोई काम नहीं। तो देखिए, हज़रत नूह का पैगाम वाकई यही दिखा रहा है कि ज़िंदगी कमरा इम्तिहान है। साफ सुथरी दावत, अल्लाह की इबादत करो, नबी का हुक्म मानो। पहली सूरत मुल्क है, दूसरी का पैगाम सूरत कलम में पढ़ के आए। अजाब से डरो सूरत अलहाका में पढ़ लिया। बख्शिश तलब करो, ये सूरत मारिज में भी हमने तौबा और इस्तग़फ़ार के बारे में पढ़ा। जितनी जल्दी तौबा कर लेंगे अल्लाह ताला आपको मुझे बचाएगा। हज़रत नूह की शान में सही बुखारी की रिवायत है 3339 कि कैसे क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के सामने आएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या आपने मेरा पैगाम लोगों को दे दिया था, तो हज़रत नूह कहेंगे जी मैंने दिया। अल्लाह ताला उम्मत से पूछेंगे तुम्हें पैगाम मिला, वो कहेंगे नहीं, जुटला देंगी कौमें। खत्ता के तवील बात है जिसका खुलासा यह है कि लोग फिर उम्मत मुस्लिमा के पास आएंगे और हम सब हजरत नूह की गवाही देंगे। लोग कहेंगे तुम तो बाद में आए हो, तुम्हें क्या पता, तो हम कहेंगे कि अल्लाह ने हमें कुरान में बता दिया था कि नूह आए थे, और यही है वकजालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल ली तकूनू शुहदालन्नास, तो अल्लाह ताला हमें शहादत हक का मिस्ताक बना दें। फिर हज़रत नूह कहते हैं, मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली। ज़रा सपने ऊपर लेके देखिए, फिर आप जाएंगी दोबारा दर्स देने अगर कोई आपसे ऐसा मामला करे। लोग सुनने को तैयार नहीं और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया, यानी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, और अड़ गए और फिर बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने इन्हें बावाज़े बुलंद बुलाया, और बेशक मैंने इनसे एलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी, और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ेगा। ये हैं तौबा इस्तग़फ़ार के फ़ायदे, और तुम्हें खूब पै दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा, और तुम्हें बागात देगा, और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते? मालकुम, क्या हो गया? देखिए सोच उभारने वाला अंदाज है। हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने अब ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा किए हैं, और इनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ बना दिया, और सूरज को रोशन चिराग बना दिया, और तुमको ज़मीन से एक ख़ास एहतमाम से उगाया है, फिर तुम्हें इसी में लौटा ले जाएगा और एक ख़ास तरीके से फिर निकालेगा, और तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया। क्या खूबसूरत पैगाम है, ज़िंदगी की हकीकत खोल के दिखा दी गई इन आयात में। मिट्टी से इंसान की पैदाइश हुई, मिट्टी से नशो नुमा पाता है और फिर मिट्टी में दफन हो जाएगा, और बाद में मिट्टी की खुराक बन जाएगा इंसान, और फिर मिट्टी से ही दोबारा निकाला जाएगा। इस मिट्टी को कहाँ तकब्बुर, सजता है। और दोबारा अल्लाह ने फिर मौका क्यों दिया? ताकि तुम इसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने तो मेरी बड़ी नाफरमानी की है और ऐसों की फरमा बरदारी की है जिनके मालो आलात ने इनको यकीनन नुकसान में ही बढ़ा दिया है, और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया है, और इन्होंने कहा कि इन्होंने हरगिज अपने माबूदों को नहीं छोड़ना, ना वुद को, ना सुआ को, ना यागूस को, ना याउक को, और ना नसर को। याद रखिए, ये उनके बुजुर्ग थे जिनका तذکرہ पीछे भी किया गया था, यहाँ आपके पास रेफरेंस मौजूद है। अपने दौर के नेक लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन तरह स्टैचूज की शक्ल में रखा और दिन रात उन्हीं के पीछे पड़े रहते थे। हजरत नूह ने शिर्क दूर करने के लिए 950 साल लगा दिए, आप मैंने अभी तक क्या किया? और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, इलाही तो इन जालिमों को गुमराही में और बढ़ा। ये लोग बसबब अपने गुनाहों के डबो दिए गए। हाईलाइट कीजिएगा, मिम्मा खतियातिहिम उग्रिकू फअदखिलू नारा, और जहन्नुम में पहुंचा दिए गए, और अल्लाह के सिवा कोई अपना मददगार उन्होंने ना पाया। अगर उनके गुनाहों ने उनको डबोया तो क्या हमारे गुनाह हमें नहीं डबोएंगे? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पालने वाले, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और ये फाजिरों और ढीठ काफिरों को ही जन्म देंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और कुल ईमानदार औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय बर्बादी के किसी और बात में ना बढ़ाना। यह आखिरी वक्त होता है जिसपे अम्बिया कराम हुज्जत तमाम कर चुके होते हैं बताने की और कौमें छुटलाने की, और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर अजाब आता है, फिर पकड़ होती है। जैसे मक्का वालों की पकड़ भी तो करीब ही थी ना इसके बाद, तो अल्लाह ताला ने यहाँ हजरत नूह की इस कहानी, जो के कह लें कि उनवान भी वही था और पैगाम भी वही था, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने आपको मुझे यहाँ क्यों बता दिया? ताकि हम अपनी फिक्र कर लें कि लोगों को दीन की दावत देने में पूरी जिंदगियां खप जाएं, हिकमत के साथ, हिम्मत के साथ और कुव्वत के साथ दावत इल्लाह देते रहें। कितनी नस्लें गुजरी होंगी 950 साल में, कभी सोचा आपने? और अजाब से पहले हजरत नूह का जो कौम से खिताब है, इसमें कितना दर्द भरा हुआ है। मरते मोमिन की तरह जो पीछे सूरत मोमिन में पढ़कर आए, 950 साल की तबलीग के बाद भी नूह की कौम को रुश्त और हिदायत ना मिली, है इतना सब्र? हम कितनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, और अपने बच्चों से, इन्होंने तो सुधरना ही नहीं। हजरत ने शबो रोज पुकारा, आप भी शबो रोज कुरान की दावत दीजिए, लीजिए, लोगों को बताइए। लाइफ टाइम पुकारना था नूह का, हम चंद दिन पुकार कर कहते बस ये नहीं सुधरेंगे। याद रखिए, जो पीपल प्लीजर होगा ना, वो दीन का काम ज्यादा अरसा नहीं कर सकता, हिम्मत टूटती है, लोग पसंद नहीं करेंगे। आप दीन की दावत देना तो शुरू करें, आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ शायद जीरो में ना जाए तो 2-4 पे तो आ जाएगा। हम लोगों की शक्लें देखते रहते हैं और अपनी नब्जें देखते रहते हैं, नहीं मुझसे ये काम अब नहीं होगा। दिन रात का दर्द था नूह का, इसके बावजूद देखिए गुनाहों की कसरत तबाही को दावत देती हुई दिख रही है, और हजरत नूह ने फिर आखिर में तमाम मर्दों और औरतों के लिए ये काम किया। आइए खुद से सवाल करते हैं, बींग अ फर्द जैसे नूह थे, और बींग अ नेशन जैसे हजरत इब्राहिम ने किया, आपने मैंने अभी तक क्या किया? आगे है सूरत जिन, इसी दावा सीरीज में देखिए। तो जिन्नों का एक गिरोह अल्लाह के नबी से एक पैगाम सुनकर गया ताइफ से वापसी पे नखला में, और जाकर उस जिन ने जो बात सुनाई एक स्टोरी की तरह भी आप सुनने लगे। यानी मैं कह सकती हूँ कि सूरत जिन एक पूरा लेक्चर है जो एक जिन ने अल्लाह के नबी का एक सेशन अटेंड करने के बाद अपने खानदान और अपनी फैमिली के लोगों को दिया। आइए देखते हैं, 72 नंबर की यह सूरत है। जब मैंने पहले कभी कुरान इस तरह नहीं पढ़ा था, या बचपन में जब पता चलता था कि कुरान में सूरत जिन है, तो मैं कहती थी जिन्नों की स्टोरीज, और वही जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिन्नों को भी क्या फिक्र लगी हुई है, अल्लाह हमें वो फिक्र लगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलू हिया इलैयन्ना हुस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समेना कुराना नजबा यहदी इला रुश्दि फामन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। आप कह दीजिए मुझे वही की गई कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजब कुरान सुना। पहले कुरान का हुसन लगता है, अजब का लफ्ज़ अजीब उजब खूबसूरती के लिए आता है, पुरकशिश मर्समराइजिंग। तो दीन की बात पेश करने का अंदाज भी ऐसा होना चाहिए कि सुनने को दिल करे। फिर उसके बाद पैगाम समझ आता है। आप अगर कुछ नए लोगों को दीन से जोड़ते हैं तो उनको बहुत मुश्किल और बहुत सख्त किस्म की बातें सुनाने की बजाय दिल में उतरने वाली बातें सुनाएं, जो राह रास की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान ला चुके हैं, अब हम हर किसी को भी अपने रब का शरीक ना बनाएंगे, और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है। ना इसने किसी को अपनी बीवी बनाया ना बेटा। कुरान के अजायब का जिक्र है सूरत के आगाज में, इन न समय न कुरान न जबा। हम भी इस वक्त यह कुरान सुन रहे हैं। जिन्होंने पहली बार कुरान सुना तो उनको अजीब लगा, हमने बचपन से सुना तो अजीब ना लगा, मगर जब कुरान को समझना और इस पर अमल करना शुरू करते हैं तो अजीब क्यों लगता है? इसलिए कि ये रास्ते का एक रोड़ा बनता है हमारी उन ख्वाहिशों के ऊपर जिसमें लोग चल रहे होते हैं। तो याद रखिए, जिसको भी रहनुमाई चाहिए, जिसकी मंजिल जन्नत है, उसको इस कुरान से गुजरना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, इस किताब के जरिए तरबियत लेनी पड़ेगी, तखीरे सोच भी होगी और तज़किया नफ्स भी होगा। अल्लाह ताला में वक्त लगाने वालों में शामिल कर दे। सही हदीस है 694 सिलसिला सहीहा की, अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब साहिबे कुरान रात और दिन की घड़ियों में क़याम करके कुरान मजीद की तिलावत करता है तो इसे कुरान याद रहता है, वरना क़याम ना करने की सूरत में भूल जाता है। तो बड़ी जल्दी भूलेगा, अभी तो आप डूबे हुए ना। अल्लाह ना करे ईद के 3 दिन छुट्टियों में ही अगर आप इधर उधर चले गए, इस दफ़ा तो पार्टियां भी नहीं होनी। लेकिन देखा गया कि दौरे कुरान में जो दिल की कैफियत होती है ना, वो ईद की 3-4 छुट्टियों में ज़ाया होती है। चौथे दिन आप कहते हैं हाँ सुनते थे, तो इससे पहले कि वो जज्बात ठंडे हो, या ऐसे ही खाना पकता है तो जोश होता है, बाद में आप उसको चूल्हा बंद कर दें तो ठंडा हो जाता है। आज ईमान ताज़ा है, इस किताब के साथ अपने आप को जोड़िए, दूसरों को लाइए, अपनी फैमिलियों को, खानदानों को ढूंढिए, दोस्तों को देखिए, जिस जिस तक कभी कुरान नहीं पहुंचा उसको किसी ना किसी कुरान के कोर्स में डलवाइए, ताकि आपके मेरे लिए हुज्जत तमाम हो जाए। और खुद तो आपने अब जिंदगी भर इससे लगनी हो ना, कहिए इंशाल्लाह। अब आगे जिनकी बात फिर कंटिन्यू होती है, फरमाए वन जनन्ना लन तकूल अल इंस वल जिन्न अलल्लाह कज़िबा। और ये कि हम में से एक बेवकूफ अल्लाह के बारे में खिलाफ हक बातें कहा करता है। देखिए, जिन उसको बेवकूफ़ कहते हैं जो अल्लाह का मुकाम न पहचाने, और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगाएं। बात यह कि चंद इंसान बास जिन्नात से पनाह तलब करते थे, जिनसे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए, और इंसानों ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा, और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो इसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। यानी अब कुरान जब नाजिल हुआ तो आसमान पे सिक्योरिटीज बढ़ा दी, जैसे बड़ी शख्सियत ने गुजरना हो तो एयरपोर्ट के रास्तों में सिक्योरिटी आती है। तो ये कुरान आप पढ़ रहे हैं जब बड़े प्रोटोकॉल से नाजिल हुआ। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे, अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या इनके रब का इरादा इनके साथ भलाई का, यानी क्यूरियोसिटी। कुछ लोगों को तजस्सुस होता है अंदर क्या हो रहा है, लॉक में क्या हो रहा है। तो जिन्हों को भी तजस्सुस हुआ कि पहले तुम खुलेआम आते जाते थे, अब ये बंद क्यों हो गए हमारे लिए रास्ते आसमानों के, उसी का जिक्र है। और ये कि बेशक बाज तो हम में नेकुकार हैं और बाज इसके बरक्स भी हैं। याद रखिए, जैसे इंसानों में नेक भी हैं बद भी हैं, इसी तरह जिन्हों में भी ये दोनों चीज़ें। हम मुख्तलिफ तरीकों से बटे हुए थे, यानी फ़िरकों में बटे हुए थे, और हमने समझ लिया कि हम अल्लाह ताला को ज़मीन में हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते, ना भाग कर इसे हरा सकते हैं। हम तो हिदायत की बात सुनते हैं, इस पर ईमान ला चुके हैं, और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा इसे न किसी नुकसान का अंदेशा न जुल्म व सितम का। क्या खूबसूरत स्टूडेंट से पहले दिन में ही तौहीद से लेकर देखिए इत्तेहाद उम्मत का सारा सबक सीख गए। हाँ, हम में बास तो मुसलमान हैं और बास बेइंसाफ हैं, बस जो फरमाबरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद कर लिया, और जो जालिम है वो जहन्नुम का ईंधन बन गए। और ऐ नबी, ये भी कह दो कि अगर लोग राह रास पर सीधे रहते तो यकीनन हम इन्हें बहुत वाफिर पानी पिलाते, ताकि हम इसमें से इन्हें आजमा लें। और जो शख्स अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह फेर लेगा, दुआ करिए हम इसमें ना हों, तो अल्लाह ताला इसे सख्त अजाब में मुबतला कर देगा। और ये कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास हैं, ज़रा सा सोचिएगा इस पे भी कि मस्जिदें तो अल्लाह की होती हैं, लोग क्यों कहते हैं मेरी और आपकी मस्जिद। ये जुमला भी बड़ा काबिल गौर है इस सूरत का, जो मुझे अक्सर सोचने पे मजबूर कर देता है कि आज हम मस्जिदों को अपनी मिनोपली क्यों बना लेते हैं, कि इस पे हमारे नाम के ठप्पे लग जाएं। नहीं, वा नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह अहदा। بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی صرف سننے سے جنت نہیں ملے گی، سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے سے ملے گی۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہتی جی، مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے آگے بھی پیچھے بھی پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز گنی ہوئی ہے، بارش کے قطرے، آپ کے سانس، آپ کی نیکیاں، میرے گناہ، سب گنا ہوا اللہ نے۔ تو سورہ جن میں بہت کچھ ہے، پورے دین اسلام کا اصل میں خلاصہ تھا، یعنی جنات پر قرآن کریم کا کیا اثر ہوا، ہم بھی سوچیں ہم پہ ہوتا ہے یا بس ٹکراتی ہیں باتیں کانوں سے اور دل پہ اب کچھ اثر ہی نہیں ہوتا بار بار سننے کی وجہ سے۔ آسمان پر زبردست پہرے ہیں، جنات میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، آداب سجدہ اور جنات کا سلام لانا دیکھا، اور اسی طرح قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اب آگے ایک پیکج ہے سورت مزمل اور مدثر کا، دونوں کا نزول کا ٹائم بھی قریب کا ہے، شروع کا یعنی شروع کی وحی میں سے یہ وحی صورتیں تھیں۔ ایک میں رات کا قیام ہے عبادت اور قیام اللیل کی صورت میں، تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، اور ایک میں دن کا قیام ہے۔ دونوں کو اکٹھا پڑھ کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے میرے پاس لائن آف ایکشن ہے۔ 73 نمبر کی صورت ہے، 20 آیتیں، دونوں میں اللہ کے نبی کو ایک میں مزمل اور ایک میں مدثر کہا، دونوں کا مطلب چادر اوڑھنے والے، یعنی اب آرام کے دن گئے، اب اٹھیے کام کے دن ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جائیے مگر کم، آدھی رات سے اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے یا اس سے بڑھا دیجئے، یعنی کبھی زیادہ جاگیں کبھی کم، آپ کو بھی ان راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو، یقیناً ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، یعنی اب آپ کے کندھوں پہ تبلیغ کی باتیں اور اقامت دین کے بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، تو اب رات کو قرآن پڑھیں، ترتیل کے غور و فکر سے پڑھیے، فہم بھی اس میں شامل ہے، جذبات بھی ہوں، صرف پڑھنا ہی مقصد نہ ہو بلکہ سمجھنا اور عمل کرنا بھی مقصد ہو۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے نہایت مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے، یقیناً آپ کو دن میں بہت سے کام رہتے ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنا لیجئے، یعنی جس کا کام کر رہے ہیں اس پہ نظریں لگائیں، اور جو کچھ وہ کہیں تو بس سہتے رہیے اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہیں۔ دعوت کے رستے میں یہ بڑے خوبصورت مشورے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، مختلف سوچ، مختلف لیل و نہار۔ جو زندگی کو کمرہ امتحان سمجھتے ہیں وہ راتوں کو اٹھتے ہیں نفس خوشی کے لیے، قیام اللیل میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، پرسکون رات میں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، دن بھر ترویج دین کی کوشش کرتے ہیں یعنی دین کو رائج کرتے ہیں، اور رات میں ذکر الہی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دنیا کو پارٹی ہال سمجھتے ہیں، ان کو رات کو جاگنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ نفس پرستی اس سے چھٹتی ہے اور نفس کو اچھا نہیں لگتا اللہ کے لیے رات کو جاگنا۔ ہاں کانسرٹس کے لیے جاگ لیں گے اور موویز اور پارٹیز اور مہندی اپٹن کے لیے جاگ لیں گے، اسی طرح ہیجان امیز میوزک میں موج مستی کرتے ہیں، ایک طرف قرآن سنتا ہے ایک طرف لوگ میوزک سنتے ہیں، کیسی حیرت کی بات ہے۔ وہ پرسکون رات میں اللہ کا قرب لیتے ہیں، یہ تاریک رات میں گناہ اور جرائم کرتے ہیں، وہ دن بھر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، یہ دن بھر کسل مندی اور سستی کے مارے بستروں پہ پڑے رہتے ہیں ہاتھوں میں کچھ ریموٹس پکڑ کر، وہ دن رات ذکر الہی کرتے ہیں، یہ دن رات خواہش پرستی کرتے ہیں، اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ آپ نے کس میں شامل ہونا ہے، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا سی مہلت دیں، یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی آنکھ ہے، और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन जमीन और पहाड़ थर्राएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। बेशक हमने आपकी तरफ भी गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल को भेजा था। तो फिरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की, तो हमने इसे इस वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पना पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, तवालत की वजह से और खौफ की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जिस दिन आसमान फट जाएगा और अल्लाह का ये वादा होकर ही रहेगा, बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह अख्तियार करे। आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोग रात की एक जमात करीब दो तिहाई रात के और आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते हैं, और आज दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह ताला को है। वो खूब जानता है कि तुम औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकोगे, बस इसने तुम पर मेहरबानी की। बस जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो पढ़ो। वो जानता है कि तुम में बास बीमार भी होंगे, बस दूसरे ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फजल यानी रोज़ी भी तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे। बस तुम आसानी से जितना कुरान पढ़ सको और नमाज की पाबंदी करो और ज़कात देते रहा करो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने आगे भेजोगे इसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज़्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहा करो, यकीनन वो माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। क्या खूबसूरत पैगाम हैं इस सूरत के, क्या सीखा ओवरऑल। इसके ऊपर अलग से लेक्चर भी मौजूद है, और ये यकीन कीजिए दावा का बेहतरीन पैकेज है इसमें। जिनको भी दीन का काम करना है या लोगों को अल्लाह से जोड़ना है वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमने सीखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामुल लैल और तरतील कुरान का हुक्म दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की गई, और इस दिन की तैयारी अभी से कर लो जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और दीन में आसानियाँ हैं मुश्किल ना करो, और जो भी तुम नेकी करोगे आगे भेजोगे अल्लाह ताला को उसका खूब पता है, बेहतरीन बदला मिलेगा। तो हम भी इसी आयत पे अमल करते हुए कि फ़ख्र मा तयस्सर मिन्हुल कुरान, यहाँ पे आज रुकेंगे, क्योंकि इससे आगे अब हमारे पास एक ख़ास टॉपिक है। सूरत मुद्दसर में भी आप देखेंगे जहन्नमियों का बहुत तज़करा, लेकिन उसके आगे सूरत क़्यामत, उससे लेकर पारा नंबर 30 के एंड तक क़्यामत की बातें। तो हम इंशाल्लाह ये हिस्सा 2 दिनों में करेंगे। कल हम इस हिस्से के साथ निस पारा 30 करेंगे, और उसके बाद अगले दिन पारा भी होगा, दुआ और शेयरिंग्स भी हैं। आप सब दूसरों को दावत दीजिए। देखिए मोमिन वो होता है जो अपने लिए जो पसंद करे वो दूसरों को भी शेयर करता है। तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस किताब से जोड़ा। जिस प्यार और मोहब्बत से हम दावतों, शादियों और बच्चों के लिए दूसरों को बुलाते हैं, इसी तरह कुरान की इन चीज़ों पर लें। कुरान पाक एक नेकी का काम है, अच्छे कामों के बाद की दुआ कबूल होती है, तो दुआ में शामिल हो। हम कुछ दुआ कल भी कर लेंगे और फिर आगे भी करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।